मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے ایک بیان شروع کیا تھا، آج انشاءاللہ اسی کو موضوع کو لے کے چلنے کا ارادہ ہے کہ دیندار بننے کے لیے، آپ تھوڑا سا نارمل بیٹھے نا، ٹھیک ہے نا، ایسے سب بیٹھتے ہیں، یہ مسلسل مجھے دیکھ کے ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، کیونکہ پہلی دفعہ دیکھا ہے نا۔ تو جب کوئی بندہ اتنا زیادہ کسی کو فوکس کر کے مسلسل کرو تو اس سے انسان کی توجہ بڑھتی ہے، پھر بیٹھے بھی بالکل سامنے ہی ہیں، تو نارمل بیٹھے ہیں جیسے سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ عجائب گھر میں جب آپ جاتے ہیں نا، کوئی چیز نظر آئے تو اس کو تو مختلف زاویوں سے پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں، جیسے مرضی دیکھتے رہیں، لیکن جب کسی انسان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس میں نارمل طریقے سے دیکھیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے آداب المعاشرت، معاشرت آپس میں رہن سہن کے آداب، وہ ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی ساری زندگی جس غم میں گزری وہ غم یہ تھا کہ مسلمان کسی حد تک عبادات کو تو دین کا حصہ سمجھتا ہے، معاملات کو دین کا حصہ ہی سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ میں اس بھائی پہ نہیں کہہ رہا، وہ تو ویسے یہ ایک بات ان کو دیکھ کے ذہن میں آئی، یہ تو صحیح ہے ماشاءاللہ، اور وہ اس پہ بہت زور دیا کرتے تھے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے محفوظ رہیں۔ تو کوئی بھی ایسا کام جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، کوئی بھی ایسی بات جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، اس کا خود انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ آج ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں بالکل ختم، گوروں نے اس کو لے لیا ہے، انگریزوں میں یہ چیزیں ہیں۔ کل میرا کہیں جانا ہوا کسی جگہ پہ، میں انوائٹڈ تھا، وہاں گیا ہوں تو میں نے بڑے سکون سے بیٹھ کے اپنے دوست احباب کے ساتھ کھانا کھایا ہوٹل میں، کسی نے تنگ نہیں کیا۔ کھانا کھا کے جب میں اٹھا تو کچھ لوگ آئے کہ آپ کے ساتھ ہم نے سیلفی لینی ہے، بڑی تمیز کے ادب، تمیز کے دائرے میں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، ضرور، سب آ گئے، سیلفی ہو گئی، مسافہ ہو گیا، اور سب بڑا اچھا لگا، جی مفتی صاحب آپ سے مل کے۔ میں نے کہا نائس ٹو میٹ یو ٹو، جو دو چار اسٹرکچر نائنتھ میں یاد کیے ہوئے تھے، خیر وہ بھی خود سے یاد کیے تھے، اسکول کا تو آپ کو پتا ہے۔ خیر میں نکل گیا، میں نے کہا یار پبلک پلیس پہ بڑے دنوں بعد تمیز سے بیٹھ کے کچھ کھایا ہے۔ آپ کہیں مفتی صاحب ہم دینی باتیں سننے کے لیے آئے اور مفتی صاحب اپنے قصے کہانیاں لے کے بیٹھ گئے، مقصد قصے کہانیاں نہیں ہیں، مقصد یہ کہ ہم اپنے عمل سے اکثر کسی نہ کسی کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی تمیز سے کام ہو گیا، کیونکہ میں کبھی جاؤں ہوٹل میں تو کھانے کے دوران بھی بعض دفعہ لوگ آتے ہیں، खा रहा हूँगा तो मुंह देख रहे होते हैं बार दफा लोग गौर से, मुफ्ती साहब बैठे थे, अब इंसान के निवाले कोई गिन रहा हो बैठ के, खाता हुआ देख रहा हो, अच्छा लगता है आप बताओ, खाया जाता है इंसान से? आप खा रहे हो और कोई घूर घूर के देख रहे, किस कदर इंसान को अजियत होती है। चुपके से वीडियो बना लेते हैं खाने, खाने के दौरान इंसान नहीं चाहता मेरी वीडियो बने, कभी मुंह टेढ़ा हो रहा है, कभी नाक साफ कर रहा है, कभी रुमाल से दाढ़ी पे कुछ गिर रहा है, बना रहे होते हैं वीडियोस। अब उनको हम कुछ कह भी नहीं सकते, भाई बेचारे मोहब्बत में कर रहे हैं। तो मैं जब कल कहीं मेरी इन्वाइटेड था ना, मैं डिफेंस की किसी होटल में था, कोई काम था, खाली खापड़ खापे के लिए नहीं गया था। इसमें भी लोग कहते हैं मौलवी खापे के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, हम तो हैं ही खापे के खिलाफ। खाना छोड़ दो, फोड़ फोड़ के ना आप अजाब में आ गए हो। खैर ये टॉपिक आज में भी, आज के बयान में भी है, इसको मैं लेके चलूंगा इंशाल्लाह। तो मैंने कहा यार इतनी तमीज से, उन्होंने कहा यहां सब पढ़े लिखे लोग हैं, यहां सब क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं। तो मोहब्बत का इजहार भी किया उन्होंने, मुसाफा भी किया, सेल्फियां भी ली, लेकिन उन्होंने इसका भी ख्याल किया कि भाई सामने जो बैठा हुआ आदमी है, जाहिर है वो आया है कोई कुछ बातचीत के लिए, कोई मीटिंग होगी, कुछ खाने के लिए, तो उसको पहले तमीज से खाने दो। देखो भी, देखा भी नहीं किसी ने। इसी तरह एक और जगह जाना हुआ था, तो वहां भी ऐसे ही मैं आधा एक घंटा बैठा रहा, तो एक साहब पे मेरी नजर पड़ी, जैसे आंखों से आंखें टकराई, उन्होंने यूं इशारा किया, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। वो मुझे पहले से जानते थे, मगर उन्होंने इशारा करके सलाम करना भी उस वक्त मुनासिब नहीं समझा। जब आंख से आंख टकरा गई तो फिर तो आई कांटेक्ट हो गया ना, तो उन्होंने कहा भाई मुस्तफा खैरियत? मैंने कहा खैरियत, अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। तो मेरा मकसद सिर्फ अपने बारे में या कोई वो बताना नहीं, हम तो नालायक लोग हैं, हकीकत है, थोड़ी बहुत अल्लाह ने इज्जत दे दी, सत्तारी का मामला किया, सत्तारी की चादरें डाल दी, तो बुराइयां तो सामने आती नहीं है, दो चार शादियों की बातें लोगों के सामने आ जाती हैं, तो जो शादियों को पसंद करते हैं वो खुश होकर फिर इज्जत देना शुरू कर देते हैं, बाकी हम क्या हैं वो तो अल्लाह ही जानता है। तो मकसद ये नहीं है कि कोई शो मारना मकसद है, लेकिन बताना ये मकसद है कि जो भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, तमीज होती है, अच्छे लोग होते हैं, वो अपनी मोहब्बत में सामने वाले को तकलीफ से बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसा स्टाइल नहीं होना चाहिए इजहार मोहब्बत का कि अंधी के बच्चा हुआ और चूम चूम के मार दिया उसने, नजर तो आ नहीं रहा था। इसी में एक और बात समझे, जब बात शुरू हो गई है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह जो बात बेहतर हो लोगों के लिए वो कहलवा दे। तो हमने टॉपिक का क्या अचार डालना है क्या? इसलाह के लिए आते हैं ना, मैं भी चाहता हूं मेरी इसलाह हो, आप भी चाहते हैं आपकी इसलाह हो, तो वो बातें जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से ताल्लुक है, जो हम लोग ख्याल नहीं करते, वो बातें सामने आ जाए तो मेरा ख्याल कोई गलत बात तो नहीं है ना, क्या ख्याल है? लोग गोरों की तारीफें क्यों करते हैं? जो भी उस सोसाइटी में होके आता है कहता है इतने अच्छे, हालांकि अच्छे नहीं है, ये हमारी गलतफहमी है, अच्छे नहीं है। दो चार अच्छाइयों को फोकस कर लिया जिससे उनके सारी बुराइयों पे पर्दा पड़ गया, और हमने दो चार अच्छाइयां छोड़ दी जिससे हमारी सारी अच्छाइयां छुप गई हैं। ये हो रहा है मार्केट में, इस पर हम 15-20 साल से चीख रहे हैं कि खूबियां सिर्फ इस्लाम में है, काफिर अच्छा नहीं हो सकता भाई, काफिर अच्छा नहीं हो सकता। कुरान कह रहा है अरायत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिका अल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। बताओ जो आखिरत का इंकार करता है यही है जो यतीमों को धक्के देता है, यही है जो लोगों को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। ये सारी अखलाकी बुराइयां, यतीमों को धक्के देना, गरीबों को खाना ना खिलाना, ये सारी अखलाकी बुराइयां अल्लाह कहते हैं आखिरत के मुनकिर में होती हैं। बाप हैरान हो गए, अल्लाह तू तो कह रहा है जो काफिर हैं वो यतीमों को धक्के देते हैं, लेकिन हम तो काफिरों को देखते हैं कि यतीमों को गले लगा रहे हैं। या तो अल्लाह मियां गलत कह रहे हैं या हमारा मुशाहिदा किया भाई गलत है। हकीकत यह है कि काफिर यतीमों को धक्के देता है, मुसलमान यतीमों को गले लगाता है। इस्लामी कल्चर में मिलेगा आपको, ये कोई यतीम की कफालत नहीं है कि किसी ट्रस्ट में 50 रुपए डब्बे में डाल दिए आपने। अंग्रेज को बोलो किसी ऐसी बेवा से शादी करो जिसके बच्चे हों, उस यतीम को पाल के दिखाओ भाई, हिम्मत है उसमें? वो कहेगा मैं अपने बच्चे पैदा करने के लिए तैयार नहीं हूं, एक से ज्यादा बच्चा होगा, मेरा खर्चा होगा, मैं छह बच्चे किसी बेवा के पाल लूं, यार कैसी बातें कर रहे हो भाई। वो कहेगा मैंने अपने अब्बा को 50 साल में ओल्ड हाउस में जमा करा दिया है, जो अब्बा पालने के लिए तैयार नहीं है वो दूसरों के बच्चे पालेगा? नहीं यार, मेरे ख्याल खोपड़ी शरीफ में बात, जो बूढ़ी मां को घर में रखने के वो यतीमों के बच्चे पालेगा? ये पालना नहीं होता जाते हुए यतीम खाने में कुछ पैसे डाल दिए और अरबपति आदमी करोड़ों रुपए यतीमों के नाम करके चला गया, ये वो पालना नहीं होता। यतीमों की कफालत आज भी आपको मुस्लिम सोसाइटी में मिलेगी, उसमें कमी आ गई है यकीनन, लेकिन फिर भी उनसे अच्छे हैं। और यतीम तो एक साइन है, अलामत है, मुराद यह है मोहताजों को धक्के देते हैं। जो भी जरूरतमंद लोग होते हैं, अल्लाह कहते हैं कि जो आखिरत का मुनकिर है वो मोहताजों और जरूरतमंदों को धक्के देता है। यहां भी इश्काल होता है भाई, माजूरों के हुकूक तो यूरोप में मिलेंगे आपको, मुसलमानों में तो माजूर रोडों पे रुल रहे हैं, इश्काल होता है कि नहीं होता? मैंने स्वीडन में एक व्लॉग बनाया था, व्लॉग से क्या करूं, जहां जाता हूं एक ताना सुनने को मिलता है, मुफ्ती साहब कपड़े धोने की मशीन में देसी घी बनाने का क्या तुक है, एक तरफ सफाई सफाई करते रहते हो, कपड़े धोने की मशीन में घी बना रहे हो और जगह कितनी गंदी। हर जगह वजाहती करता फिर रहा हूं, भाई कपड़े धोने की नहीं है, वो मशीन खरीदी ही घी बनाने के लिए, खुदा के बंदे कभी अल्लाह की कसम एक बनियान भी नहीं धोला है उसके अंदर। दूसरी बात, वो जगह गंदी नहीं है, सीमेंट लगा हुआ था, व्लॉगिंग में वो ऐसा लग रहा था काला काला कुछ है, मजदूर ने काम किया, सीमेंट कमबख्त ने उखाड़ा नहीं, तो मेरी शामत आ गई। हम कोई प्रोफेशनल व्लॉगर तो नहीं है ना, जो हुआ खड़क करके चला दिया, उसमें लोग कह रहे हैं जगह गंदी है और जिस मशीन में कपड़े धुलते हैं उसमें ना, वो कपड़े धोने की मशीन है भाई, इतने शुगर है, कहीं मैला लग रहा हूं आपको मैं, हैं साफ सुथरा लग रहा हूं। तो खैर, तो स्वीडन में मैंने एक व्लॉग बनाया, माजूर शख्स है, माजूर लड़का है, गवर्नमेंट उसकी केयर कर रही है 12 घंटे 12 12 घंटे के वक्फे से, जो उसका खिदमत गुजार है ना वो चेंज हो रहा है। जो भी कोई माजूर शख्स हो ना, गवर्नमेंट वहां पर उसको एक सर्वेंट देती है, मुलाजिम देती है, गवर्नमेंट के खर्चे पे मुलाजिम 12 घंटे एक मुलाजिम खिदमत करेगा, 12 घंटे दूसरा। सवाल पैदा होता है, ए अल्लाह तू तो कह रहा है कि ये यतीमों को जरूरतमंदों को धक्के देते हैं, हमारी गवर्नमेंट करती है ये काम जो मुसलमान गवर्नमेंट है? हैं, कोई बेचारा लंगड़ा हो, कोई माजूर हो, मुलाजिम उसके घर आ रहे हैं, 12 घंटे एक मुलाजिम खिदमत कर रहा है गवर्नमेंट के खर्चे पे, 12 घंटे दूसरा मुलाजिम, उसके खाने का ख्याल, कोई बीमारी है तो मेडिसिन का ख्याल, धक्के तो हम दे रहे हैं। भई आपकी भूल है, वो धक्के देते हैं। उनके यहां माजूरों के लिए कानून इतने सख्त इसीलिए हैं कि भाई अपने माजूर भाई को रखने के लिए तैयार नहीं है वहां। अगर गवर्नमेंट, देखो एक मलफूज सुना है ना, जरूरत ईजाद की मां है, सुना है ना आपने, जब किसी चीज की जरूरत होती है ना तो कानून फिर खुद बखुद मजबूत होता चला जाता है। कराची के हालात देख लो, दहशतगर्दी थोड़ी होती है, गवर्नमेंट दिलचस्पी नहीं लेती। हां मैं ये कह रहा था, जब बहुत ज्यादा दहशतगर्दी हो जाती है, मुल्क का की बका ही खतरे में पड़ जाती है, तो कैसा अमन कायम होता है कि नहीं होता? भाई रेंजर्स ने कंट्रोल संभाल लिया है, भाई आर्मी ने कंट्रोल संभाल लिया है, भाई पुलिस के इख्तियारात बढ़ा दिए गए हैं। कराची में तो हम ये भुगत रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं ये देख रहे हैं हम, दहशतगर्दी जाती है, होते होते एक उरूज पे जाके फिर एकदम अमन हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ये देख रही होती है भाई अब मामला हमारे हाथ से निकल रहा है, अब तो हम भी मारे जाएंगे, तो कैसे अमन हो जाता है कि नहीं हो जाता? एक हद तक होता है ना, उसके बाद जाके एक्शन लिया जाता है। अभी पाकिस्तान में डॉलर जो है वो ऊपर ही जाए जा रहा था, जब बहुत ज्यादा खतरा हो गया एस्टेब्लिशमेंट को, गवर्नमेंट को, भाई ये तो बगावतें खड़ी हो जाएंगे, एकदम फौज का डंडा घूमा है या किसका डंडा घूमा है अल्लाह ही बेहतर जानता है, किस किस के सॉफ्टवेयर अपडेट हुए, क्या हुआ है, लेकिन डॉलर बहरहाल बहुत ही उड़ान से थोड़ा सा नीचे आ गया, थोड़ा सा आया, बहुत ज्यादा आया, फिर डबल हो जाएगा दोबारा, आप बेफिक्र रहे। खैर, तो याद रखो उन मुल्कों में जो खवातीन के हुकूक की तंजीमें बनी हैं, جو معذور لوگوں کے حقوق پر آواز اٹھائی گئی ہے، گورنمنٹ نے سب کچھ اپنے قبضے میں لیا ہے، اس لیے لیا ہے کہ انسانوں نے رحم کرنا چھوڑ دیا تھا۔ 100 سال پرانا یورپ اٹھا کے دیکھو، جو خواتین پہ ظلم ہوتا تھا، جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا تھا، ایسا ظلم جس کا مسلم سوسائٹی میں تصور بھی نہیں ہے۔ جبری بدکاریاں، جبری زنا، حرامی، ناجائز بچے، ان بچوں کا کفالت کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ تو حلال بچوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، بہت دفعہ ہوتا ہے باپ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ اگر اتنے سخت قوانین نہ بناتے عورت کے حقوق کے لیے، معذوروں کے حقوق کے لیے، تو ایسا نہیں تھا کہ جیسا ہمارے ہاں باپ کو فالج ہو گیا، 15 سال سے بیٹا فالج زدہ باپ کی خدمت کر رہا ہے بستر پہ۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بتاؤ؟ میرے دوست ہیں، یو کے سے پڑھ کر آئے ہیں، رہے پاکستان میں ہی ہیں، دیندار ہیں ماشاءاللہ، رہے یہیں پر ہیں، نیشنل یو کے ہیں، رہے کہاں ہیں، ٹائم پاکستان میں زیادہ گزرا۔ میں دیکھ رہا ہوں 2 سال سے اپنے باپ کی بستر پہ ایسی خدمت کر رہے ہیں۔ میں کبھی ملنے کے لیے جاتا ہوں نا، کیونکہ بہت شدید بیمار ہیں ان کے والد صاحب، اور بس یہی ہوتا تھا، ابھی اطلاع آئی، ابھی انتقال ہوا، لیکن لگے ہوئے ہیں اپنے ابا کی خدمت میں۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ ابھی کارپٹ گھر میں نہیں ہونا چاہیے، سارے کارپٹ ابا کی خاطر نکال دیے گھر سے، ابا کو بچاؤ۔ یہی اگر گورا ہوتا، اور پیسہ بھی کس کا خرچ ہو رہا ہے؟ گورنمنٹ کا نہیں ہو رہا، کس کا ہو رہا ہے بولو؟ بیٹوں کا ہو رہا ہے۔ گورے میں ظرف ہے اتنا؟ تو بھائی گورنمنٹ کا کام ہے یار بوڑھوں کو پالنا۔ ہوتے ہوں گے لاکھوں کو، ایک آدھ ہوتا بھی ہوگا، میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہوتے ہیں، لاکھوں میں ایک آدھ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں لاکھوں میں ایک آدھ برا ہوتا ہے جو بوڑھے باپ کو گھر سے نکال دے، ان کے ہاں لاکھوں میں ایک آدھ اچھا ہوتا ہے جو ابا کو گھر میں رکھے۔ کفر کو ظاہر سے دیکھو گے بڑا اچھا لگے گا، جب اس کی ڈیپتھ میں جاؤ گے نا، گہرائی میں جاؤ گے، بھائی اچھا اچھا صرف اسلام ہے، اسلام کو جو فالو نہیں کرتا، اچھائی بچھائی کی باتیں کرنا چھوڑ دو۔ کچھ خوبیاں ہیں، وہ خوبیاں میں بتانا چاہ رہا ہوں ابھی، کہ وہ چند خوبیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے وہ ساری برائیاں چھپ گئی ہیں، اور ہماری چند برائیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ساری اچھائیاں بولو چھپ گئی ہیں۔ پیکنگ کا بڑا فرق پڑتا ہے میرے بھائی، پیکنگ کا بڑا فرق پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں مشہور ہے لوگ ٹیکس نہیں دیتے، ٹیکس چور قوم ہے، ٹیکس چوری کرتی ہے، کرپٹ ہے۔ انگریز ٹائم پہ ٹیکس دے گا، لوگ کہتے ہیں واہ بھائی واہ، حقوق تو وہ ادا کر رہے ہیں ریاست کے، ہم لوگ تو سارے چور ہیں۔ میرے بھائی ہمارے ہاں ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں غلط کرتے ہیں ٹیکس نہ دے کے، خدا کی قسم جتنا ٹیکس بنتا ہے نا، اس سے 20 گنا زیادہ زکاتیں اور صدقہ خیرات نکال رہے ہوتے ہیں۔ پوری پوری زندگی طلاق یافتہ بہنوں کی کفالت، اس کے بچوں کی کفالت، اور اس مہنگائی میں کر رہے ہیں۔ گورے کو یہ مہنگائی دے دو، وہ جو 2-4 لوگوں کی کر بھی رہا ہے نا، اس کی بھی چھوڑ دے گا۔ کر ہی نہیں رہا، بیوی کی نہیں کر رہا تو باقی کس کی کرے گا بھائی، تو کفالت۔ لیکن چند اچھائیاں میں نے اور آپ نے اپنے اندر پیدا کر لی، تو پھر دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے مسلمان اچھے ہوتے ہیں۔ دنیا کہے گی مسلمان کیا ہوتے ہیں بھائی، بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو ٹیکس ہم نہیں دیتے، لیکن اور کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں پتا ہے ہمارے حکمران دیتے ہیں، میں تو دیتا ہوں، خیر میرے ٹیکس سارے دل خدا کی قسم ذرا بھی نہیں چاہتا ٹیکس دینے کا۔ اور میرا جو ٹیکس والا وکیل ہے نا، اس نے 2-3 وکیل میں بدل چکا ہوں۔ ایک نے کہا کہ یوں دکھا دیں گے تو ٹیکس بہت کم ہوگا، میں نے کہا جتنا بنتا ہے پورا دے دو بھائی، ہمیں نہیں چھپانا، جاؤ جو بنتا ہے پورا ٹیکس دو، ایسی کی تیسی یار۔ تو لیکن خدا کی قسم دل ذرا بھی نہیں چاہتا، پتہ ہی نہیں جا کہاں رہا ہے۔ گٹر کا ڈھکن لگ جائے نا ہماری گلی کا، گٹر ابلنا بند ہو جائے، میں ڈبل ٹیکس دینے کے لیے تیار ہوں۔ خیر یہ تو دکھڑے چلتے رہتے ہیں۔ کل پنجاب سے 2-3 بندے آئے، اور مجھے میں نے کہا کیسا پایا کراچی کو، پہلی دفعہ کراچی ہے، کہہ رہے ہیں یار بہت گندا پایا مفتی صاحب۔ میں نے کہا وہ تو میں پوچھ ہی نہیں رہا آپ سے، میں کہہ رہا ہوں لوگوں کو کیسا پایا۔ تو کچھ بول نہیں رہے تھے، میں نے کہا بہت اچھا پایا ہوگا لوگوں کو۔ میں نے کہا ایسا نہ ہو یہاں بھی برائی کر دیں کہ برا پایا، پر میں بولوں گا نکل بھائی تو हमारे ही खर्चे पे चाय भी पी रहा है, हमारे दफ्तर में बैठा हुआ है और हमारी ही बुराइयां कर रहा है। मैंने कहा ये बोल रहा है बहुत अच्छा पाया कराची के लोगों को। फिर मैंने खुद बोल दिया, मैंने कहा कराची के लोग बहुत तहजीबी याफ्ता होते हैं, बहुत मिलनसार होते हैं। तो फिर मुझे खुद ख्याल आया कि कराची के लोगों के पास तो टाइम है ही नहीं किसी को। पंजाब में आप जाओ ना, आधा घंटा बैठेगा बंदा, चाय पिलाएगा, खाना खिलाएगा, पता नहीं खब्बे के पाए सज्जे के पाए पूछेगा। कराची में कोई पूछता ही नहीं है। ये बहुत शिकायत होती है पंजाब के लोगों को कराची वाले। मैंने उनको ये इसका एक्सप्लेन कर दिया, मैंने कहा यहाँ टाइम नहीं है लोगों के पास, कोई किसी को पूछता पूछता नहीं। अच्छा खैर, तो कुछ मैं बार बार ये बयान में अर्ज करता हूं कि कुफर में खामियां ही खामियां हैं। यतीमों को पालने का हौसला नहीं है, अपने बच्चों को पालने का। बस जो दो चीजें याद कर लो आपको, जो अपने बाप और मां को नहीं पाल सकता और अपने बच्चे पैदा करने के लिए तैयार नहीं है कि पालना पड़ेगा, टेंशन होगी, तो बस खत्म हो गई, एनफ। अब इंसानियत में इंसानियत एक टोपी ड्रामा है, समझ रहे हो। लेकिन दो चार खूबियां क्या हैं जिसकी वजह से उनकी हर खामी पे पर्दा डाला हुआ है। एक अखलाक, जाहिरी अखलाक, जब मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं भाई, तमीज। एड्रेस बत पूछो तो तमीज से बताएगा, पूरा घर पहुंचा के आएगा, यूं नहीं कहेगा यूं करो आगे जाके किसी से पूछ लेना जाओ। नंबर दो, मामलात में ज्यादातर, सारे नहीं, वहां भी बड़े बड़े करप्ट लोग हैं, ज्यादातर लोग मामलात में क्या हैं, लेन देन में एक नंबर है। चाहे वो बिजनेस की नीयत से हो कि यार हम धोखा देंगे तो हमारा बिजनेस क्या होगा, ठप होगा। मुसलमान कहते हैं अभी लूट लो यार, कल की कल देख, अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल। अब किसी मुसलमान ताजिर को बताया जाए कि यार तू झूठ बोल के माल बेचेगा, अभी तो डबल पैसा कमा लेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये झूठ पकड़ा जाता है, तेरा बिजनेस ठप होगा, अगले साल तक मशहूर हो जाएगा, यार ये बंदा दो नंबर ही कर रहा है, दो साल में मशहूर हो जाएगा, फिर तेरा बिजनेस नहीं चलेगा। तो उसने उलमा के बयान सुने होते हैं, भाई मौत का कोई भरोसा नहीं है, अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल पे उसने बयानात सुने, यार आज की देखो कल किस पे छोड़ दो, जो अल्लाह आज खिला रहा है वो कल भी खिलाएगा, अभी पहनाओ जितना पहना सकते हो, कल की कल देखी जाएगी। गोरा कहता है नहीं भाई, कल की कल नहीं, आज कुर्बानी दो, नफा कब उठाओ, कल उठाओ नफा। आप यहां किसी को ठेकेदारी पे काम दे दो, खुदा की कसम, हमने भी इसी माहौल में जिंदगी गुजारी है ना, एडवांस पैसे पकड़ा दो, उफ, काम नहीं करेगा मेरे भाई, वो नहीं करेगा काम, नहीं करके देगा काम। किसी को एडवांस में पैसे तो पकड़ाओ आप, अंग्रेजों में एडवांस पैसे दोगे सारे काम छोड़ के आपका काम पहले करेगा, कह रहे इसने मुझे पहले पैसे दे दिए। हमारे एक दोस्त सऊदी अरब में, सऊदी में भी ऐसा ही है कि कर देते हैं काम। ये सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमानों का मसला नहीं है, ये पाकिस्तानियों का मसला है, बांग्लादेश और पाकिस्तान, क्योंकि इकट्ठे बहन भाई है ना, इकट्ठे रहे बहुत अरसा, तलाक तो बाद में हुई थी, बहन भाइयों में तो तलाक नहीं होती, लेकिन मेरी मुराद है कि जो टूटा है रिश्ता, तो वहां भी ऐसा ही है, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों, इंडिया में भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इंडिया में मेरा जो तजिया है निस्बतन कम है मुसलमानों में, यहां बहुत है। आप किसी को एडवांस पैसे पकड़ा दें कि वो काम कर देगा, अब आपका काम गया तेल लेने, इतना तरसाएगा, इतना शर्म भी नहीं आएगी झूठ बोलते हुए, मेरे मामू मर गए, मेरी नानी मर गई, मेरे चाचा मर गए, आज मेरा ये हो गया, आज मेरा फलाना हो गया। मेरा तजर्बा, एक दफा किसी को पैसे एडवांस में दे के काम करवाया, नहीं कर रहा, जब मैंने कहा काम छोड़ो मुझे पैसे दे वापस, जब जाओ, आज मेरे बच्चा बीमार है, आज मेरी खाला का ऑपरेशन है, आज मेरी नानी का मसला है, मैं इतना मुसीबत में आ गया, मैंने कहा जिसको मारना है एक ही दफा में रिपोर्ट पेश कर दे, कौन कौन मरने वाला है, सबके जब इज्जतें गुजर जाएंगी और शोक खत्म हो जाएगा मैं उस वक्त आऊंगा। शर्म भी नहीं आती, तुम जिंदा को मार रहे हो यार। एक बूढ़ी औरत गई ना स्कूल में, कहने लगी मेरा नवासा यहां पढ़ता है, उसको बुलाइए जरा काम है। तो जो चौकीदार था अंदर गया, रिपोर्ट लेकर आया, कह रहे वो आपके इंतकाल पे गया भाई छुट्टी लेके, उसने एप्लीकेशन दी थी मेरी नानी का इंतकाल हो गया है, झूठ बोला उसने, तो वो आपके इंतकाल ही पे घर गया हुआ। माएं बच्चों को खुद झूठ सिखा रही होती हैं, बाप बच्चों को खुद झूठ सिखा रहा होता है, मियां बीवी एक दूसरे को टोपी करा रहे होते हैं बच्चों के सामने, बच्चे झूठ जब झूठ सीखते हैं तो फखर भी करते हैं। तो मामलात जो है ना, मामलात बहुत खतरनाक हद तक मुसलमान के मामलात गिरे हुए हैं। देखो एक बात खूब अच्छी तरह समझ लो कि जब तुमने किसी के पैसे देने हैं ना, उसकी जिम्मेदारी अल्लाह की कसम नहीं है कि आपको याद दिलाए कि आपने देने हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको याद भी दिलाओ और उसको घर तक पहुंचाने का भी आपका जिम्मा है। ये मजहब का हिस्सा है, ये इसके बगैर अल्लाह नहीं मानेगा इस मजहब को, इस इस्लाम को जिससे हम चल रहे हैं। लिचड़पना, लिचड़पना पैसों के मामले में लिचड़पना। पहले जमाने में जो सूफिया किराम होते थे ना, वो अपने मुरीदों के दिल से दौलत की मोहब्बत नहीं, ये दौलत की मोहब्बत ही तो है ना कि पैसे देते हुए मौत आ रही है कि चार दिन और रख लूं अपने पास, पांच दिन और रख लूं, क्या कर लेगा भाई तू, हो सकता है वह भूल जाए सामने वाला, ले ही नहीं। तो पहले जमाने में उलमा पता है क्या करवाते थे, जो बुजुर्गाने दीन है वो प्रैक्टिकली तरबियत करवाते थे, अपने मुरीदों से कहते थे पैसे जलाओ, आग लगाओ इस पे। जैसे इस जमाने में होते ना तो कहती कड़क कड़क 5,000 का नोट है, आग लगाओ इसको, इसकी मोहब्बत दिल से निकले। ये जो बुत है ना, बुत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों की मोहब्बत दिल से निकालने के लिए क्या किया था, सिर्फ जबानी बयान को पर काफी नहीं, सब बुतों की गत बना दी, टुंडा लुंजा बना दिया, ताकि उनके दिल से अपने माबूदों की, अपने खुदाओं की इज्जत निकले। मैं जो आमिलों के खिलाफ बोलता हूं ना कि लिचड़ कुछ भी नहीं, तो आपके दिल से इनकी अकीदत निकालने के लिए। मुझे क्या शौक है भाई आमिलों से, ना कोई मेरा वास्ता है ना कोई लेना ना देना, मेरी क्या दुश्मनी, मैं तो मानता ही नहीं लोगों को। आपके दिल में इनकी बड़ी अकीदत मोहब्बत है, इसलिए मैं कहता हूं तो कुछ भी नहीं है ये, जब तक ये स्टाइल नहीं होगा आपके दिल से इनकी अकीदत और रूहानियत का जो ड्रामा रचाया हुआ है इन लोगों ने वो निकलेगा नहीं। लिचड़ है, लिचड़ समझते हो, किसी काम का नहीं। और फिर मैं वजाहत कर दूं, लोग कहते हैं आप दो नंबर आमिलों के खिलाफ है, ये क्यों लोग जब इल्जाम लगा रहे हो मेरे ऊपर, मैं एक नंबर आमिलों के खिलाफ हूं जिन्होंने बड़े बड़े उलमा का इलाज करके उनको ठीक किया है, उनके खिलाफ हूं मैं, क्योंकि वो आपको लग रहा है इन्होंने ठीक किया है, वो इन्होंने ठीक नहीं किया, वो खुद ही ठीक हुए हैं, वो बेचारे इस खुशफहमी में हो गए कि इन आमिलों ने हमको ठीक किया है। समझ में आ रही है बात, इनके खिलाफ हूं जो एक नंबर हैं, जो नेक समझे जाते हैं, ये ऐसे ही हैं, ये कुछ भी नहीं है, जिन जुड़ैल भूत के इन्होंने दिमागों में वो डाल दिया है। सूर्य फलक सूर्य नाश पढ़ के दम करो, आयतल कुर्सी पढ़ के दम करो, बस दम दम आदम, इसके बाद ऐसी की तैसी, जिन्ने आने आए, भाव यार हमारे पास टाइम नहीं है इतना जिन्नात भगाने का, खुद ही भाग जाएगा। और अगर इन चीजों में पड़ गए ना, जिन चुड़ैल भूत उसके पर ये आ रहा है उसके, तो तुम्हारी नस्लें कयामत तक के लिए बर्बाद। मेरे पे क्यों नहीं जिन आता यार, मानता ही नहीं इनका, मैं जिन्नात के वजूद का कायल हूं, मुनकिर नहीं हूं, इनके जो इलाज के नाम पे ड्रामे हो रहे हैं ना इसका कायल नहीं हूं, इसलिए जिन मुझे लिफ्ट ही नहीं कराता अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्नात को भी इतने चैलेंज किए फिर भी नहीं आते, अंग्रेजों पर आता है जिन, कभी देखा किसी गोरे पे जिन आयो, हां उन गोरों पे जिन आता है जो पादरियों के पास जाते हैं। मजहबी अंग्रेजों पे जिन आएगा, जो सेकुलर और मुल्हिद हैं, एथियस्ट हैं, उन पे जिन बोलो नहीं आता। क्यों? हिंदुओं में जो मजहबी हिंदू हैं उन पे चुड़ैले भी आती हैं, भूत भी आते हैं। जो साइंटिस्ट हैं हिंदुओं में या सेकुलर किस्म के लोग हैं, उन पे ना जिन, ना जादू, ना चुड़ैल, ना भूत। गलत तो नहीं कह रहा मैं, अब तहकीक करें। सिखों में जो मजहबी है उन पे जिन चुड़ैल भूत जादू सब कुछ होगा। अंग्रेजों में जो चर्च जा रहा है मजहबी है, पादरियों से ताल्लुक है, जिन चुड़ैल भूत जादू सब होगा। अंग्रेजों में जो सेकुलर लिबरल होगा उस पे कुछ भी नहीं आएगा। आप कहेंगे इसका मतलब मजहब गलत है, फिर मजहब को फॉलो नहीं करना चाहिए। ओ भाई मजहब में ये चीजें है नहीं। मजहबी लोगों को जिन चुड़ैल भूत के नाम पर उल्लू बनाना आसान होता है, क्योंकि फी नफ्सी ही वो तो जिन्नात के वजूद के कायल होते हैं। एक चीज के कायल हैं, अगले सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल कर दो कि तुम पे आया हुआ है तो मान लेता है। सेकुलर मानता ही नहीं जिनको, आता ही नहीं उसके ऊपर। तो मैं ये नहीं कह रहा जिन्नात का इंकार कर दें, वो तो साबित है कुरान और सुन्नत से, लेकिन जिन्नात से डरना और लिफ्ट कराना छोड़ दें। इस मामले में सेकुलर बन जाए आप, कोई भी नहीं आएगा। और जिसके घर में आमिल इलाज कराने के लिए आया, बस समझ लो अब जिन्नात ने यहां बसेरा कर लिया, सूंघ सूंघ के जाएगा। इसलिए इन चीजों को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराओ, हंसी खुशी जिंदगी गुजारो यार। मिर्चें जला रही हैं खवातीन बच्चों की नजर उतारने के, पता नहीं क्या क्या ड्रामे हो रहे हैं घरों के अंदर। अंग्रेजों को देखा मिर्चें जलाते हैं, उनके बच्चों को क्या हो जाता है। छोड़ दो बस, जो हमें सूरह फलक सूरह नास आयतुल कुर्सी, इससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। पहले देवबंदी और बरेलवियों में ये धंधे थे, पहले हदीसों में भी ये दबा के दुकानें चलना, पहले हदीसों में ये नहीं था पहले, पहले हदीसों में भी दबा के ये धंधे अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गए। जिन चुड़ैल भूत सुन्नत रुकिया और गैर सुन्नत रुकिया, तो वो भी माशाल्लाह उनकी भी दुकानें अब चल रही है इसमें। तो देवबंदी बरेलियों में तो पहले से ही होलसेल के हिसाब से था, पहले बरेलियों में बहुत था, उसके बाद देवबंदियों ने आया तो देवबंदियों ने बरेलियों को भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब अहले हदीस इसमें अल्हम्दुलिल्लाह उनमें भी आ रहे हैं कुछ चुड़ैल भूत और इस टाइप की चीजें। तो बचाओ अपने आप को इन फजूल चीजों से। कोई आमिल बोले ना जिन आया, बोले थप्पड़ मारूंगा रख के दोबारा जिन का नाम लिया। तेरे ऊपर आया, तेरे बाप पे आया होगा, तेरी मां पे आया होगा जिन। जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, जिन्नात आएंगे, क्योंकि जिन आपका कॉन्फिडेंस देखता है, जो जिसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है उन पर ये चीजें असर करती हैं। और 99.9% नफसियाती बीमारियां होती हैं। बच्चे को जब आड़ा तिरछा होना शुरू हो जाए ना, उठपटांग बातें कर रहा है, फौरन किसी नफसियाती डॉक्टर को दिखा दोगे तो काबू में आ जाएगा। लोग नफसियाती डॉक्टर के पास जाने के बजाय आमिल के पास चले जाते हैं, वो केस को बिगाड़ के इतना खराब कर देता है कि डॉक्टर की दस्तरस से मामला निकल जाता है। और बच्चा कह रहा है ना कि मुझे चुड़ैल नजर आ रही है, जिन नजर आ रहा है। भाई जब दिमागी तवाजुन ठीक नहीं होता तो जो चीजें होती नहीं है वो नजर आ रही होती हैं, ये नेचुरल है। मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने लिखा कि हजरत में अल्लाह की मोहब्बत में इतना दीवाना हो जाता हूं जिक्र करते हुए कि ऊपर छत है लेकिन मुझे आसमान के सितारे नजर आना शुरू हो जाते हैं। उसका ख्याल था कि वो कहेंगे यही तो कमाल है, यही तो कयामत है कि तुम अल्लाह को याद कर रहे हो और अल्लाह ने आसमान के दरवाजे तुम पे छत के दरवाजे खोल दिए। तो मौलाना थानवी ने फौरन फरमाया कि जिक्र छोड़ दो, तुम्हारे दिमाग में खुश्की पैदा हो गई है। बहुत ज्यादा जिक्र करने से क्या पैदा हो गई है? खुश्की। ऊपर छत है, नजर क्या आ रहा है? सितारे नजर आ रहे हैं। दिन में तारे नजर आते हैं तो पागल है ना ये, जिसको दिन में तारे नजर आ रहे हैं, तो जिसको ऊपर छत पे भी तारे नजर आ रहे हो तो पागल है। उन्होंने कहा छोड़ दो भाई, फिलहाल तुम्हारा दिमाग सही काम है, नॉर्मल। बहुत ज्यादा इबादत करने से भी मसला खराब होता है ना, तो नॉर्मल लाइफ गुजारो हंसी खुशी। इस्लाम नेचुरल दीन है, नेचर और इस्लाम एक चीज के दो नाम है। तभी मुसलमान खुश होता है क्योंकि नेचर पे होता है। देखो हम खुश हैं ना नेचर पे, अल्हम्दुलिल्लाह। शराब नहीं पीते, आइस नहीं लेते, सुट्टे नहीं लगाते। अब मेरे सामने कोई आके बीसियों फजाइल बताए। एक नशई से मैंने पूछा, यार तुम इतनी खतरनाक नशे में क्यों लग गए? कहते हैं यार मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि यार टाइम यानी बहुत हार्ड वर्किंग करनी है, मेहनत बहुत करनी है, एग्जाम करीब आ रहे हैं, तो ये बूस्टर ले लो, बूस्टर। आजकल ये सुट्टे मुट्टे के ना एक बहुत अच्छा सा लफ्ज रखा था, बूस्टर ले लो, इससे एनर्जी बूस्ट करेगी तुम्हारी, एकदम फिट फाट होके स्टडी करना, मेहनत करना, नंबर ठीक ठाक अच्छे आ जाएंगे, जब बेहतरीन नंबर आ जाएंगे उसके बाद ये बूस्टर को छोड़ देना, सोते रहना पड़ेगा। अब मेरा कोई क्लास फेलो अगर मुझे ये कहता है ये बूस्टर ले लो, मैं पहले उलमा से पूछता, जी ये इतना एनर्जी को बूस्ट करना इस चीज के जरिए हलाल है हराम? उलमा कह देते हराम है, तो मेरे लिए अब ऑप्शन क्या हो जाता? खत्म, इस्लाम मुझे रोक देता। लेकिन जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते ना, उनके मुकद्दर में ये बुराई है, वो नशे की तरफ जाते हैं क्योंकि अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं कि यार एक दफा बूस्टर ले लो, क्या जा रहा है हराम। तो उनके नजर में तो हलाल हराम कोई चीज ही नहीं है। वो बूस्टर लिया, उसके बाद एकदम ऐसे हो गए हवाओं में उड़ रहे हैं, चांद की सैर करके आ गए। उन्होंने कहा यार नील आर्मस्ट्रांग तो चांद पे कितनी मेहनत करके गया था, हम यहीं बैठे बैठे कहां पहुंच गए? चांद पे। एक चर्सी से पूछा ना, सुना है चर्स पी के लोग चांद पे पहुंच जाते हैं? तो कह रहे अभी कहां बैठा हूं मैं। तो लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है? वो बूस्टर लेने के बाद चस्का लगता है फिर, क्योंकि जिंदगी में टेंशनें तो आती रहती हैं। एक इम्तिहान की टेंशन थोड़ी है, 20 टेंशनें और आएंगी, फिर टेंशन आएगी, तो फिर यार वो उस दिन सुट्टा लगाया था बड़ा मजा आया था, टेंशन फ्री हो गया था, दोबारा लगाओ, होते होते उसके बाद बर्बाद नशे ही। तो ये हिसाब होता है। तो हमें इस्लाम ने बचा लिया, हमें जरूरत ही नहीं है सट्टा लगाने की भाई, एक चाय थी हमने वो भी बहुत कम कर दी है, जान छुड़ाओ इस मुसीबत से भी यार, जहां जा रहे हो चाय 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 का अजाब है, कोई फायदा नहीं है चाय कॉफी का, वो सिर्फ पराठे की रह गई है मेरी, क्योंकि वो निवाला हलक में चाय के बगैर उतरता ही नहीं है, अल्लाह करे उससे भी जान छूटे, अब वो पराठा ही छोड़ना पड़ेगा, अब पराठा छोड़ दे तो फिर रह क्या जाएगा यार, जिंदगी में शादियां भी हो गई, पराठा ही रह गया एक एंटरटेनमेंट की चीज। खैर, तो चंद खूबियां बुराइयां ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारी हर खूबी पे हर खूबी छुप रही है। यहां लोगों में जज्बा है बेवाओं पे यतीमों पे खर्च करने का, खुदा की कसम ऐसा जज्बा है आंसू निकलते हैं, पता चल जाए कि ये मोहताज है। ये जो लोग यहां फकीरों को धक्के दे रहे होते हैं ना, इसलिए कि पता ही नहीं होता, 99 फकीर ड्रामेबाज होते हैं, पता चल जाए ना ये मुस्तहिक है, मैं कहता हूं लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी कि यार मैं खाना खिलाऊंगा, वो कहेगा मैं खाना खिलाऊंगा। हमारे उस्ताद सऊदी अरब में बहुत रहे, उन्होंने कहा सऊदी अरब में कोई यतीम हो जाए, आप अरबों की हजारों बुराइयां करें, क्या यतीम हो जाए ना लड़ाइयां हो जाती हैं कि कौन कफालत करेगा इसकी, ये लड़ाइयां हो जाती हैं कौन कफालत करेगा यतीम की, क्योंकि कुरान ने इतने यतीमों के हुकूक बयान किए हैं, इतने हुकूक बयान किए। आपको पता है सऊदी अरब में केस हुआ था, बीबीसी में रिपोर्ट आई थी, बूढ़ी मां एक बेटा कह रहा था मेरे पास रहेगी, दूसरे ने कहा तेरे पास नहीं मेरे पास रहेगी, बंदूकें निकल आई थी दोनों बेटों की, तो कह मैं अपनी बूढ़ी मां को तेरे पास कैसे छोड़ूं भाई। कोर्ट में केस चला है उन दोनों का, कहां केस चला है, अरबों की भी जब आप फर्स्ट टाइम मिलोगे तो ऐसा लगेगा बड़े बुरे हैं, लेकिन किसी कौम के बारे में बहुत जल्दी राय कायम ना किया करो, जब तक उस कौम में घुल मिल ना जाओ, उनकी जबान से वाकिफ ना हो, बहुत क्लोज ना हो जाओ, फिर उस कौम की खूबियां खुल के सामने आती हैं। हमारे अंग्रेजों के बारे में भी बहुत जल्दी राय कायम कर लेते हैं, अरबों के बारे में भी, मुसलमानों के बारे में भी, पहली दफा में तो मैं भी कितने अच्छे तरीके से मिलता हूं ना, नाइस टू मीट यू, मैं भी मिलता हूं तो क्या मतलब, मैं बहुत अच्छा हो गया हूं, आप रह के देखो सफर करो फिर पता चलेगा भाई ये ऐसा है भी कि नहीं है, ना बुरी राय कायम करो ना अच्छी राय कायम करो, आप बोलो भाई हम इतना तवील अरसा हमने गुजारा ही नहीं है, हमें क्या पता अच्छे हैं कि बुरे हैं। अरबों में आज बहुत बाज चीजें बड़ी खूबी हैं, ठीक है उनके बद अखलाकी है उन लोगों में, एयरपोर्ट पर ही नजर आ जाती है वो, लेकिन हमारी हरकतें कौन सा ठीक है। सऊदी अरब में जो करप्शन में पकड़ा गया है ना, दो कौमें हैं वहां, मिस्र के और पाकिस्तानी और एक बांग्लादेश, मिस्र में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने बड़ा नवाजा उन लोगों का, तो सारे मिस्री नहीं होनी बहुत बहुत सारे लोग, तो एक इमेज बहुत बुरा बन गया है हमारा वहां पे। फिर भी मैं कहता हूं वो जो बदअखलाकी से पेश आते हैं एयरपोर्टों पे और अंग्रेजों को बड़ी इज्जत देते हैं हमें नहीं दे रहे होते, ये बहुत गलत है, लेकिन ये गलत है तो इसका मतलब नहीं कि सब कुछ ही क्या है गलत है। वहां ये पता चल जाए ना ये बंदा जो सही अरब है, असल में अरब में बहुत सारे दो नंबर अरब भी हैं जो असल अरब नहीं है, हर आदमी जब सऊदी अरब में मुआशी तरक्की हुई ना तो हर आदमी ने जाके वहां रहने की कोशिश की है। खैर अभी मेरा ये टॉपिक नहीं है कि अरब अच्छे हैं बुरे हैं, ये इस पर एक नई जंग छिड़ जाएगी, हम तो ये बता रहे हैं भाई कि मैंने ऐसे लोग देखे हैं 10-10 साल अपने बाप जो लकवा का है या फालिश का मरीज है 10-10 साल उसकी खिदमत कर रहे हैं, पेशानी पर लकीर नहीं आ रही, बाप तो दूर की बात भाइयों को पाल रहे हैं, एक भाई बाहर जाता है दूसरे भाई को की मुआशी तरक्की की फिक्र में लग जाता है, ये बड़ी खूबियां हैं। कुर्बानी पे कितना खर्च होता है, कितना गोश गरीबों को खिलाया जाता है, इस गुर्बत और महंगाई में भी कहीं कोई हादसा आ जाए कहीं सैलाब आ जाए कैसे लोग ताबुन कर रहे होते हैं बढ़ चढ़ के, बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन वही बात है चंद खामियां ऐसी हैं जिससे सारी खूबियों पे पर्दा पड़ रहा है। वही आदमी जो 1 करोड़ का चेक यतीमों के लिए निकाल के दे रहा होगा ना आपको, आप उससे 1 करोड़ नहीं 5 लाख का लेन देन कर लो, आपके पैसे पी जाएगा वो, यतीम को दे देगा 1 करोड़, जिसको 5 लाख देने हैं ना जो फर्ज हैं उसको 5 लाख नहीं देगा। मैंने ऐसे ऐसे सखी लोग देखे हैं ट्रस्टों में दे रहे हैं, इधर दे रहे हैं उधर दे रहे हैं करोड़ों करोड़ों रुपए, और जो जिनके पैसे लेके भागे हुए हैं वो रातों को उठ उठ के बद्दुआएं कर रहे हैं, मेरे 50,000 तो दे दे मेरे भाई, खुदा को उसके नहीं देंगे। क्योंकि सोसाइटी में ये कल्चर ही नहीं है किसी से पैसे लेके देने का। किराएदार जो है मालिक मकान को टाइम पे किराया देता है, खुद से कभी नहीं देगा। मालिक मकान 20 दफा याद दिलाएगा वरना देगा ही नहीं। तो मुसलमान का जो बड़ा मसला है ना, ख्याल ना करना एक दूसरे का, उसकी रियायत ना करना, ऐसा तरीका इख्तियार करना अपनी अकीदत तो पूरी हो जाए, सामने वाले की ऐसी की तैसी हो जाए। लेन देन में, घरों में, अब ये बहुत लंबा टॉपिक है मेरा, जो असल टॉपिक में लेके चला था वो रह ना जाए कहीं। तो इसलिए भाई जब लोगों से मिलो अच्छे तरीके से मिलो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। हाँ मैयत पे देख लो आप, किसी के हाँ मैयत हो जाए, अरबों में जब हो जाए ना, एक बड़ी खूबी है उनके यहां, मैयत हो गई, गुसल किया, दफन किया, चलो जी जनाजा पढ़ाया, दफना दिया, मा कद्दर अल्लाह, अल्लाह के यहां जो मुकद्दर था हो गया भाई, चलो। हमारे यहां उधर से मामू आ रहा है, उधर से चाचू आ रहा है, उधर से नानी ने नहीं देखा बच्चा, फलाने ने नहीं देखा, डिमकाने ने नहीं देखा, फिर ताजियत करने वालों का एक इतना बड़ा हुजूम कि जिसके यहां मैयत होती है वो किसी काम का नहीं रहता। मेरे जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, हमारे वालिद साहब बहुत मशहूर थे हमारे इलाके में, बहुत मशहूर शख्सियत थे, जो जानते हैं हमें बचपन से उनको पता है, फेमस तरीन शख्सियत थे, क्योंकि दीन की खिदमत उन्होंने बहुत की, तबलीग जमात के अमीर थे। मेरे वालिद साहब की रात 10 या 11 बजे डेथ हुई होगी, मैं मदरसे में था, डेथ भी अचानक हुई ना, मस्जिद में इशा की पढ़ने के लिए आए, सफ में बैठे हुए थे, हार्ट अटैक हुआ, वहीं गिर गए। मैं मदरसे में था, हमें इतला नहीं थी, लोग उठा के हॉस्पिटल लेकर गए हैं तो पता चला हार्ट अटैक हुआ है, तो उसी हार्ट अटैक के दौरान उनकी डेथ हो गई। मेरे पास जब इतला पहुंची तो डेथ हो चुकी थी, लेकिन बताने वालों ने हमें डेथ का नहीं बताया कि एकदम, क्योंकि हम तो मिल के बिल्कुल फिटफाट थे, तो बताने वालों ने यह बताया कि आपके वालिद साहब की तबीयत बहुत खराब है, आप छुट्टी लेके हॉस्पिटल चले जाए। लेकिन जब रास्ते में पता चला कि जी उनकी डेथ हो चुकी है, कितनी कयामत गुजरी हमारे ऊपर। रात 9 या 10 बजे उनकी डेथ हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह फजर के बाद हम उनको दफना चुके थे, और यह ताखीर भी इसलिए हुई कि कब्र खुदने में ताखीर हुई है, अगर कब्र इससे पहले तैयार हो जाती है तो फजर से पहले दफना देते हम उनको। समझते हो कि नहीं समझते हो? नहीं समझ रहे मेरा ख्याल है। ये अजमियों की रस्म है, ये गैर मुस्लिमों की रस्म है, मैयत पे ओ घंटों घंटों मुंह दिखाई, रूनुमाई, वाह। फिर जब हमने फजर के बाद दफनाया, और फजर के बाद भी दफनाने में ताखीर क्यों हुई है, मैंने बताया ना, कब्र खोदने में, पथरीली जमीन थी, कब्र खोदने में बहुत टाइम लग गया। फजर के बाद हमने, मैंने ही जनाजा पढ़ाया, दफना दिया, उसके बाद दोपहर 10 बजे तक महल्ले में खबरें फैलना शुरू की, भाई हाफिज मसूद साहब का इंतकाल हो गया। मेरे वाले साहब का नाम मशहूर थे हाफिज मसूद साहब, लोग आ रहे हैं भाई कहां है, मैंने हम तो दफना चुके हैं। ये नहीं कि हमें गम नहीं था, जो मेरे ऊपर कयामत गुजरी थी वो मैं ही जानता हूं। आज लोग बात कह रहे हैं ना हजरत मौलाना पे एतराज कर रहे हैं कि वो उनके इतना बहुत बेचारे गमजदे हैं, अल्लाह उनके गम को हल्का करे। बाज़फा इंसान को मोहब्बत होती है भाई, वो तभी चीज है ना, ये तो अपने महबूब छिन जाते हैं, इंसान को दुख होता है, गम होता है, ये नेचुरल है, इसमें कोई वो नहीं है। तो मेरे ऊपर ऐसी कयामत गुजरी थी कि हम तो एकदम से हो गया ना, तसव्वुर ही नहीं था। लेकिन हम फजर के बाद दफना चुके थे, लोग आ रहे कह रहे यार कल तक तो यही घूम रहे थे, मगरिब में तो हमने मुलाकात की है, तो गुसल कब हुआ, कफन कब हुआ, पता ही नहीं चला। फिर बाद लोगों ने दलील दी कि देखो आपको रखना चाहिए था जोहर तक, असर तक रखना चाहिए था, जनाजा जितना बड़ा हो उतना सवाब ज्यादा होता है। यकीनन जनाजा जितना बड़ा हो मैयत को फायदा ज्यादा होता है, लेकिन वो जनाजा जो सुन्नत के मुताबिक हो। अगर आप 6 महीने तक जनाजा रोक लो कि पूरा कराची आ जाए तो जनाजा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन यह अमल जायज होगा? एक सुन्नत पूरी करने के लिए एक दूसरी सुन्नत को आप नजरअंदाज कर रहे हो जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शरीयत में जल्दी दफनाना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत जनाजे को बड़ा करने के। हमारे हजरत एक मिसाल दिया करते थे कि सुन्नत वाला छोटा जनाजा वो गैर सुन्नत वाले बड़े जनाजे से अफजल है। सऊदी अरब के बादशाह की मैयत को देख के फ्रांस या जर्मनी का पादरी मुसलमान हो गया था उसके जनाजे को देख के। सऊदी अरब में बादशाह की भी डेथ होती है ना, बड़े आराम से गुसल कफन दफन चलो खलास, समझ रहे हो? और मलका बरतानिया की जब डेथ हुई थी तो कितने दिनों बाद दफन किया है बताओ? एक हफ्ता तो लगा होगा, फलाना आ रहा है, ढिमकाना आ रहा है, यूं आ रहा है फलाना। अबे भाई उनके लिए दुनिया सब कुछ है, हमारे लिए दुनिया मुसाफिर खाना है। जो गया वो मंजिल पे पहुंच गया, हम भी आ रहे हैं। ये कोई पहली दफा थोड़ी हुआ है, नहीं आ रही मेरे ख्याल बात समझ में? तो इसलिए मरो भी आराम से, मरने भी आराम से दो। पहले पहुंच गया, हम अगले स्टेशन से आ रहे हैं, ठीक है ना? वो पहले निकल लिया, हम अगली ट्रेन से, क्या ख्याल है भाई पहुंचने इसमें क्या गम होना तो एक नेचुरल है। अब ये थोड़ी कि बेटे का या बाप का गम ना हो, वो तो एक नेचुरल है, वो तो होगा भाई। आपका बच्चा अमेरिका भी जा रहा होता है, आपको पता है अगले साल वापस आ जाएगा, फिर भी आप रो रहे होते हो कि यार एक साल की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। सिर्फ बीवी कहीं जा रही हो तो नहीं, बीवी मैके जा रही हो नहीं रोता आदमी, मैंने आजकल नहीं देखे रोते हुए। चाहे 10 साल के लिए जा रही हो, आजकल जाती भी नहीं है, आजकल जाती भी नहीं है। अब क्या बताओ, हमारे हौसले को दाद दो यार। हमारी अगर एक जाती भी है तो 3 मौजूद होती हैं। आप लोग के यहां तो एक जाएगी तो आप 1 महीना रिलैक्स, हमारे यहां एक जाएगी तो 3, 4-5 साल में शायद कभी ऐसा हुस्ने इत्तेफाक हुआ हो कि सब गए हुए हो। अफसोस की बात है, सब चले जाएं। हमने इसी मुंह के साथ घर में जाना है, ऐसा हम बयान दे नहीं सकते जो अफोर्ड ना कर सके। लेकिन मुझे याद है एक दफा हमारे सब घर वाले गए हुए थे, शायद एक ही दफा हुआ होगा ये, मैं मस्जिद में आके बैठा हुआ था दोस्त साहब आपके साथ। मैंने कहा ऐसा लग रहा है जैसे जन्नतुल फिरदौस में टहल रहा हूं मैं। ये इसकी अलामत नहीं कि मुझे घर वालों से मोहब्बत नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान पे जिम्मेदारी का एक एहसास होता है ना। रात को टाइम पे घर जाना है, अंडे ले लाए, आलू नहीं लाए, मैसेज आ गया कहां, ये चलता है सब घरों में। इससे इंसान को एक अंदर से लाशूरी तौर पर एक टेंशन सी होती है। तो मैं जब बैठा ना यहां, मैंने कहा यार पता नहीं मुझे किस चीज की एक अजीब सी सुकून सा मिल रहा है मैं खुद पर। फिर मुझे लगा कि यार आज मैं बिल्कुल आजाद हूं, बिल्कुल क्या हूं, कोई मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है कि उस घर में जारी देनी है, उधर जाना है, उतने बजे जाना है, लेट हो गया तो वो ऐसा अजीब सा महसूस सा हुआ मुझे। खैर कभी कभार ऐसा होता है तो, लेकिन इंसान का गुजारा भी नहीं है घर वालों के बगैर। आप घर में जाओ तो फिर घर में भी दिल नहीं लगता अगर घर वाले ना हो। ये उसकी तलाफी के लिए मैंने अगला जुमला बोल दिया। हकीकत भी है कि घर भी आदमी के जब घर वाले ना हो, ये अजीब सी चीज है यार। घर हो तो भी वो मसले चलते हैं, लेकिन ना हो तो उससे बड़े मसले। घर में दिल कहां लगता है, दीवारें खाने लगती हैं आदमी को, बच्चे ना हो, घर वाले ना हो, क्योंकि जब घर वाले जाएंगे तो बच्चे भी सारे जाएंगे। तो खैर अब अंग्रेज क्या जाने ये चीजें यार, सेकुलर लिबरल लोग क्या जाने ये खुशियां। तो चंद चीजें ठीक कर लो भाई, उससे फायदा क्या होगा, हमारी सारी खूबियां खूबियों के तौर पर उजागर होना शुरू हो जाएं। और जो मैं बयान लेके चला था, जल्दी से उसको मैं कंप्लीट कर दूं। मैंने पिछले हफ्ते जो बयान शुरू किया था ना, ताकि वहीं से फिर हम कंटिन्यू करेंगे, तो बीच में एक जरूरी बातें आ गई। कुछ बयान में ये लेके चला था कि देखो इंसान की जो इस्लाह है ना, इस्लाह, इस्लाह की दो किस्में हैं, एक मादी लिहाज से अपने आप को ठीक करना, एक रूहानी एतबार से अपने आप को ठीक करना। हमें ठीक होने के लिए दोनों तरह से ठीक होना है, जिस्मानी एतबार से भी और रूहानी एतबार से भी। रूहानी में फिर दो चीजें, दिल के आमाल और जाहिरी अमाल। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जितनी भी ये चीजें हैं, चाहे आप जाहिरी एतबार से अपने आप को ठीक करना चाहो, चाहे आप रूहानी एतबार से, इसके लिए जो बुनियादी चीज है वो है हिम्मत। वो क्या है, हिम्मत। आप कुछ भी करना चाहते हो हिम्मत के बगैर नहीं हो सकता। दो चीजें चाहिए होती हैं, एक सही नॉलेज मिल जाए, एक हिम्मत हो। नॉलेज ही सही नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सही रास्ता है कौन सा। मिसाल के तौर पर आपने अपनी सेहत ठीक करनी है, किसी ने आपको बता दिया कि 6 पराठे रोजाना खाओगे तो ताकतवर हो जाओगे। आपने हिम्मत करके 6 पराठे खाना शुरू कर दिए तो क्या ताकतवर हो जाओगे, खुद पराठा बन जाओगे थोड़े दिनों में। आप 6 बर्गर खाना शुरू कर दिए, खुद बर्गर बन जाओगे थोड़े दिनों में। हालांकि हिम्मत तो आपने बहुत दिखाई, लेकिन आपके पास नॉलेज सही नहीं थी। बाद अब नॉलेज सही नहीं होती। अब 6-6 गिलास उठ के लोग सुबह निहार मुंह पानी पी रहे होते हैं ना, बस डॉक्टरों के कहने पर। वो नॉर्मल आदमी अगर ये करेगा तो नॉलेज सही नहीं, बेड़ा गर्क कर देगा अपना। हाँ किसी बीमारी में डॉक्टर ने बताया अलग बात है। तो नॉलेज सही हो इंसान के पास, लेकिन इतना भी काफी नहीं है। हमारे पास बार दफा नॉलेज सही होती है, हम सबको पता है पांच नमाजें फर्ज हैं, ये नॉलेज है या नहीं, लेकिन पढ़ लेते हैं क्या? फजर में जितने नमाजी और जुम्मे में नमाजी, जुम्मे में हिम्मत होती है, फजर में पता नहीं क्या मसला हो जाता है, उठा ही नहीं जा रहा होता। तो ये हालांकि अगर इस अल्लाह को ना मानते तो जुम्मा भी ना पढ़ते ना, फिर हिंदू पढ़ने आता है जुम्मे की नमाज। हिंदू से आप बोलो तू फजर क्यों नहीं पढ़ता, वो कहता मैं तो ईद भी नहीं पढ़ता भाई, मैं इस्लाम को मानता ही नहीं हूं। हमसे अगर ये कोई पूछे कि तू फजर क्यों नहीं पढ़ता, अगर वो जवाब में कि मैं इस्लाम को मानता ही नहीं, तो हम कहेंगे फिर जुम्मा क्यों पढ़ने आया तू? इसलिए वो मानता है इस्लाम को, तभी तो जुम्मा पढ़ने आ रहे हैं ना। लेकिन जिस अल्लाह ने बताया जुम्मा फर्ज है, उसी ने फजर को भी क्या करार दिया? फर्ज। लेकिन फजर में मार्केट से लोग क्या होते हैं? शॉर्ट। वजह क्या है? जुम्मे के लिए इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं चाहिए जितनी हिम्मत फजर के लिए चाहिए। तो नॉलेज का मसला नहीं है, मसला है कम हिम्मती का। तो मैं उस पर पिछले हफ्ते बयान लेके चला था कि कम हिम्मती दो वजह से होती है। हर मुसीबत के पीछे कम हिम्मती है, सुस्ती है, पोस्तीपना जिसे कहते हैं। डॉक्टरों से सुना हुआ है जॉगिंग करनी चाहिए, नहीं करते। अबे चला ही नहीं जाता यार, कौन करेगा, छोड़ो पड़े में। सुना हुआ है हकीमों डॉक्टरों से बादाम खाने चाहिए, अबे कौन छीलेगा बैठ के, बर्गर आ मंगा पिज्जा फोड़ फाड़ दे। डॉक्टरों से सुना हुआ है सिगरेट सेहत के लिए क्या है, नुकसानदायक है, जब छोड़ो तो एक टेंशन होती है यार, वो पी लो यार बस। बीसियों चीजें हैं जिनकी हमारे पास सही नॉलेज है, मगर उस नॉलेज पर अमल क्यों नहीं हो रहा? कम हिम्मती की वजह से। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अब हिम्मत जो पैदा होती है ना, कम हिम्मती जो होती है, कम हिम्मती की भी दो वजूहात हैं, एक रूहानी वजह और एक मादी वजह है। रूहानी वजह तो मैं बताऊंगा उसका इलाज क्या है। रूहानी का मतलब ये कि आप सही हैं, आपके बॉडी कम हिम्मत नहीं है, बॉडी एक पावरफुल है, ताकतवर जिस्म है। एक मिसाल देता हूं, आपकी नींद ही पूरी नहीं हुई, दो दिन से जागे हुए हो, तो किसी भी काम की हिम्मत पैदा होगी आप में? किसी भी काम की हिम्मत नहीं होगी। अब ये जिस्मानी वजह है, रूहानी वजह है, जिस्मानी वजह है। इसका इलाज किसी बुजुर्ग के बयान सुनना नहीं है कि आप बुजुर्गों के बयान सुने ताकि हिम्मत पैदा हो, या मोटिवेशनल स्पीकर को। इसका इलाज है सो जा, नींद पूरी कर ले, दिमाग फ्रेश होगा, वरना और मरेगा तू। तो मादी वजह भी है और रूहानी वजह। अब मादी वजह, जो गोरे हैं या लिबरल सेकुलर लोग हैं, सेहत बनाने में बड़े एक्टिव होते हैं, वो हिम्मत होती है, मजहब में बिल्कुल ढीले होते हैं। वजह क्या है कि उनमें कुछ रूहानी खराबी होती है। आखिरत पर जैसा ईमान होना चाहिए वो नहीं होता, जन्नत जहन्नम पर जो यकीन होना चाहिए वो नहीं होता, अल्लाह की जो मोहब्बत होनी चाहिए वो नहीं होती, दुनिया के मुसाफिर खाने का इस्तेहजार होना चाहिए वो नहीं होता। तो दोनों चीजों को, जब तक दोनों किस्म की बीमारियों को ठीक नहीं करोगे, उस वक्त तक हिम्मत पैदा नहीं होगी। और याद रखो, कम हिम्मती एक ऐसी बीमारी है, आखिरत तो तबाह होती है, दुनिया भी बर्बाद होती है कम हिम्मत आदमी की। दुनिया में सुस्त और कम हिम्मत को जिंदा रहने का हक ही नहीं है, मर जाते हैं ये लोग, और जिंदगी इनकी मौत से बदतर होती है, मौत से बदतर जिंदगी होती है। तो कम हिम्मती खत्म करने के लिए मेरे भाई अपनी खुराकों को भी ठीक करने की जरूरत है, लाइफ स्टाइल को चेंज करने की भी जरूरत है। मैं बहुत देरों से सोच रहा हूं, हमारे उस्ताद मेरे शेख मुर्शिद मुझे कह रहे हैं आप लोगों को बैत करें बैत करें। मेरे जहन में आ रहा है कि मैं जो अगर बैत लड़कों को शुरू कर दूं ना, तो इस रिवायती अंदाज से नहीं चलूंगा मैं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मसला दीनदारों, चाहे दीनदारों बेदीनों, सुस्ती है। बैत करने के बाद अगर मैंने शुरू कर दिया ना, तो इंसान का बच्चा बनाने के लिए मैं इनको सुबह भगवाऊंगा, बस सुबह दौड़ लगानी पड़ेगी, नहीं तो जाओ अपने घरों में बैठो। बार दफा खानका में लोग आते हैं, खा खा के और गर्दन क्या हो जाती है। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे अकाबिर ने जो खानकाओं का सिलसिला चलाया, उससे बड़े बड़े अल्लाह वाले लोग पैदा हुए, चुस्त लोग पैदा हुए। लेकिन अब जमाना क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अब हमने अपने शेख की खानका में टाइम गुजारा, हमारे हजरत ऐसे एक्टिव थे, ऐसे एक्टिव, मैं वाकयात बताता रहता हूं, उनको देख के हमें मोटिवेशन मिलती थी। तो सबसे अहम चीज है ये कम हिम्मती को खत्म करना। और याद रखो, कम हिम्मती में रूहानी इलाज तो बाद में शुरू होगा, वो जिन चुड़ैल भूत वाला नहीं, रूहानी जो सच्ची मुची वाला रूहानी इलाज है। लेकिन इससे पहले कुछ खुराकें हैं जिन पे कंट्रोल किए बगैर हिम्मत का पैदा करना मुमकिन। आप सुबह तीन पराठे खा के आप समझो कि अब मेरे अंदर दिन भर काम काज की हिम्मत पैदा होगी, ना ना ना। तीन पराठे फोड़ दिए आपने पूरियों के साथ, तो आप हो गए टुन। देखो इतवार को लोग क्या करते हैं, सुबह देर तक सोते हैं ना, आज तो छुट्टी है, उसके बाद जाके हलवा पूरी खाते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं। क्या ख्याल है? अब ऐसे आदमी को मैं जन्नत जहन्नम के फजाइल सुनाऊं, जिक्रुल्लाह सिखाऊं, ये फिर भी ठीक होने वाला? क्योंकि इसमें ग्लूकोज इतना बढ़ गया है। ये हमारे पैगंबर ने क्यों कहा है कम खाओ? ये पैगंबर का टॉपिक थोड़ी है कि ज्यादा खाओ या कम, ये तो डॉक्टरों का टॉपिक है। क्या ख्याल है भाई? अबे क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये पैगंबर का टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक मेडिकल साइंस का है। लेकिन फिर भी पैगंबर हमें कह रहे हैं कम खाओ कम खाओ, रोजे रखो। इसका मतलब इसका मजहब से ताल्लुक है। ज्यादा खाने वाला, हर वक्त खाने वाला, पराठे फोड़ने वाला और बर्गर फोड़ने वाला, वो नेक बन ही नहीं सकता। वो सुस्त हो जाएगा, तोंदे निकलेंगी, आड़ा तिरछा होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, हर जगह जहां बैठेगा लेट जाएगा, वहां पे उठेगा ही नहीं। पुलिस आएगी इसको उठाने के लिए, और पुलिस भी एक घंटा लेट आएगी क्योंकि वो भी हलवा पूरी खा के बैठी हुई है। पुलिस इसको उठाने के लिए आएगी मगर वो भी एक घंटा लेट, वो भी तो हलवा पूरी बिरयानी खा के बैठे हुए हैं वो भी। हर पूरी कौम सुस्त है या नहीं है? तो इसमें दोनों तरह से इस्लाह की जरूरत है। एक खुराक पे कंट्रोल करवाना, खुराक पे कंट्रोल मतलब छोड़ दो खाना पीना, इतना खाना हमारी सेहत के लिए जरूरी। आपको याद है मैंने पिछले हफ्ते बयान किया था, इतवार को मगरिब के बाद मैंने बयान किया डेढ़ दो घंटा, उसके बाद फिर ईशा के बाद मैंने एक डेढ़ घंटा बयान किया, बड़ी फ्रेश होके बिल्कुल। तो मैं उसमें कम खाने की तरकीब भी दे रहा था, तो मैंने लोगों को एक बात बताई, मैंने कहा मैंने 24 घंटे में अब तक कुछ नहीं खाया है, और आप देखो मैं कितनी पावर से ताकत से बयान कर रहा हूं। नहीं आई समझ में? कैसे नहीं खाया था? एक दिन पहले मैंने रोजा रखा, मगरिब में मैंने इफ्तार किया, थोड़ा सा खाया मगरिब में, और फिर 10 बजे मैंने खाना खाया था। 10 बजे के बाद अगले दिन मगरिब में मैंने इफ्तारी नहीं की, मुझे पता था मगरिब में मैंने इफ्तारी कर ली तो मुझसे बयान नहीं होगा क्योंकि मैं क्या हो जाऊंगा तुन। तो मैंने दो खजूरें खाई और नींबू पानी थोड़ा सा पी लिया, बस फिटफाट हो गया बिल्कुल। ऐसी एनर्जी आ जाती है आदमी में। उसके बाद ईशा तक मैंने बयान किया, फिर एक घूंट वो जो लेमन का पानी था ना उसमें शहद डाला हुआ था, एक घूंट वो पी लिया, फिर दो घंटे बयान किया है। मैं शो मारने के लिए अल्लाह की कसम ये वाकया नहीं बनना, मैं इतना नेक हूं कि मैं 24 घंटे में एक दफा खाता हूं। हो सकता है मैं आपसे डबल खा रहा हूं, लेकिन आपको बात तो सही बतानी है ना मुझे। ये जो हमने मुसल्लत कर लिया है ना, खाओ खाओ खाओ, सेहत जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है इतना खाना, बिल्कुल गलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्ने आदम के लिए दो लुक्मे भी बहुत हैं, फामुल वाहिदी यकफील इतनेइन, एक आदमी का खाना दो के लिए काफी है। कम खाओ कम खाओ, अच्छा खाओ कम खाओ। अब अगर मैं जो रोजा इफ्तार किया खजूरों से किया ना, और लेमन वाटर से, चीनी नहीं शहद डाला उसमें, अगर मैं उसमें कम खाता लेकिन खाता दो पकौड़े, फिर शायद ये एनर्जी वो पकौड़े बयान के दौरान बता रहे होते कि अब हमें हजम तेरा बाप करेगा क्या। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? एक्टिव रहने के लिए अपनी खुराक को कंट्रोल करना जरूरी है। जो दीनदार लोग फोड़ रहे हैं ना इस वक्त, इसमें नेक बनने का तस्वूर दिमाग से क्या करो भाई निकाल। जब सुस्त होता है दिमाग, आपके बॉडी ग्लूकोज से इंसुलिन से, मीठा जब जाएगा तो इंसुलिन निकलेगी ना उसको हजम करने के लिए, तो सारा दिन तो इंसुलिन और शुगर के पट्टे चल रहे हैं आपकी बॉडी में, सारा दिन तो उसी में उलझी हुई है वो बॉडी, तो करेगी क्या वो। इसलिए हमारे मजहब का हिस्सा है। देखो हर कौम में कुछ मजहबी खाने होते हैं, इस्लाम में मजहबी खाना कुछ भी नहीं है। इस्लाम में एक नहीं खाना। एक वाक्य सुना के बस बयान खत्म करता हूं, ये टॉपिक अगले हफ्ते भी मैं लेके चलूंगा। इंसान का बच्चा बन इसके बगैर मेरे भाई बनना मुमकिन नहीं है। फोड़े जा रहे हैं फोड़े जा रहे हैं। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है, सही हदीस है कि इस उम्मत में जो सबसे पहले जो खराबी आएगी ना, बुराई आएगी, वो ज्यादा खाना आएगी। झूठ आएगा और ज्यादा खाना, झूठी गवाहियां और ज्यादा खाना, ये सबसे बड़ी बुराई है इस उम्मत की। हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूं। तो हर कौम में कुछ खाने होते हैं ना, हिंदुओं के यहां कुछ मखसूस किस्म की लड्डू होते हैं, वो उनके यहां खाना है, फलाने के यहां ये होता है, फलाने के यहां ये होता है। इस्लाम में क्या है? इस्लाम में कि नहीं खाओ, ये हमारा मखसूस शियार है कि हम रोजे रख के खाना पीना क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। वो वाकया सुनाता हूं, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह थे या कोई और बुजुर्ग थे, उनका मुनाजरा हुआ एक हिंदू पंडित से। मुनाजरे होते थे ना अंग्रेज के दौर हुकूमत में, बड़े मुनाजरे होते थे। तो हिंदू पंडित ने कहा, आमने सामने जब आके बैठे, हिंदू पंडित ने कहा कि ये पता नहीं एक दे गए या दो दे गए हैं, इतनी बड़ी देग इंसान से 20 गुना बड़ी होती है वो, तो मैं ये देग खा जाऊंगा। इंसान खा सकता है? नामुमकिन है। तो मैं ये खाऊंगा, ये मौजजा होगा ना कि इतना सा पेट लेकिन पूरी मैंने हजम कर ली। आप भी देख खा के बताओ। अगर आपने देख खा ली, इसका मतलब आपका मजहब सच्चा है कि खुदा किसके साथ है? बोलो, आपके साथ। वो आपकी मदद कर रहा है कि इतनी बड़ी देख उसने हजम करवा ली। अगर मैंने खा ली और पेट खराब ना हुआ, हजम हो गई है, मैं मरा नहीं, तो इसका मतलब भगवान किसके साथ है? मेरे साथ है। कि एक मौजजा, मौजजे होते हैं ना कि भाई जो चीज अकलन मुमकिन नहीं है वो हो गई, तो इसका मतलब इसके पीछे खुदा ही ताकत है। उन्होंने फिर थोड़ी देर के बाद कहा, देखो भाई ये देगे खाना ये भैंसों वैसों का काम है, इंसानों का काम नहीं। इंसान का काम है ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना, भूख लग रही हो फिर भी ना खाए, ये है काम। तो ऐसा कर, मैं भी एक हफ्ता भूखा रह के दिखाता हूं, तू भी एक हफ्ता भूखा रह के दिखा। जो एक हफ्ता भूखा रह के भी जिंदा रह गया, उसका दीन सच्चा। इसका मतलब खुदा किसके साथ है? उसके साथ। वो नहीं बैठ सका उसमें। तो मेरे भाई, खाना पीना गाय भैंसे हमसे ज्यादा खाती है, ये इनके लिए छोड़ दो। हमारा काम क्या है? खाने पीने पे बोलो कंट्रोल करना। आप कहते हो ये बादाम पिस्ते अखरोट हम कैसे खाएंगे? जब आप उधर से चाय का खर्चा और ये पान गुटखों का कम करोगे ना, तो मैंने कैलकुलेशन करके देखी है कि महीने की चाय ये बादाम से ज्यादा महंगी है। आप कैलकुलेशन करके देख लो, पिस्तों से अखरोटों से बोलो ज्यादा महंगी, दूध से ज्यादा महंगी पड़ती है ये सब चीजें। तो खैर, ये मेडिकल साइंस का शोबा है, क्या खाना है क्या नहीं खाना। मैं तो बिल सिर्फ ये कह रहा हूं कि अपने मुंह शरीफ पे कंट्रोल करने की कोशिश करो, और उसका बेहतरीन हल अल्लाह रसूल ने हमें बताया, रोजे रखना। क्या ख्याल है भाई, क्या करना है भाई? मैंने एक बयान में लोगों को कह दिया 10 रोजे रखो, मैं भी रखूंगा। मैंने तो रख लिए 9 के बाद। उस दिन क्या हुआ कि मेरी आंख नहीं खुली, फिर एक बाद में मैंने कंप्लीट किया। तो मेरे बयान पे लोगों के कमेंट्स आए कि हमने आपके कहने पे रोजा रखा, मुसीबत में पड़ गए, सारा दिन कोई काम नहीं हुआ, कमजोरी से हालत निढाल हो गई। तो खूब समझ लो, ये वक्ती है, क्योंकि आदत जिस चीज की पड़ी हुई है तो उसको चेंज करने में टाइम लगता है। तो कोई बात नहीं, सो के गुजार लो, 3-4 दिन के बाद यूज टू हो जाओगे, आदत हो जाएगी। सहाबा कराम 2-2 खजूरें खा के जंगे लड़ी हैं, फतह की हैं, तो वो भी तो इसी मिट्टी के बने हुए थे ना। 2-4 दिन लगते हैं यूज टू होने में, वो कमजोरी नहीं है, वो एडिक्शन है, आदत है। दिमाग कह रहा होता है डाल कुछ पराठे, डाल कुछ, क्या है, क्यों नहीं खाया तूने, वो दिमाग टेंशन में आया हुआ होता है 3-4-5-6 दिन, उसके बाद वो टेंशन खत्म। तो इसलिए थोड़ा सा इस तरफ आने की जरूरत है, क्योंकि खा खा के नहीं हो सकता, ये सुस्ती दूर नहीं हो सकती है। और भी बहुत सारी चीजें इसके अलावा, फिर कभी इंशाल्लाह अगले बुलेटिन में। मुफ्ती साहब, आपसे ये सवाल है कि जो सिगरेट और ये क्या लिखा है, वेब का कारोबार, इंटरनेट का कारोबार, ये खरीदो फरोख करते हैं, ये कैसा है, क्या ये हराम है? सिगरेट का कारोबार हराम तो नहीं है, मकरूह नापसंदीदा है, उस पर कई दफा पहले भी बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। इंटरनेट का तो जायज है, उसमें क्या खराब है? जरा निकाह पढ़ा लें भाई। यासिर बेग वल साबिर बेग कहाँ हैं आप? हैं दुल्हन का नाम सनाना बेग, सफाना बेग बिनते नासिर बेग, मेहर की रकम है 1 लाख। दुल्हन के वकील कौन है? वो आप हैं। आपने इजाजत दी कि मैं सफाना बेग बिनते नासिर बेग का निकाह 1 लाख मेहर में यासिर बेग वल साबिर बेग से करूं, इजाजत है जी? الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب یاسر بیگ والصابر بیگ، میں نے 100,000 مہر میں صفانہ بیگ بنت ناصر بیگ سے آپ کا نکاح کیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ تھوڑا زور سے جزاک اللہ، دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما، اے اللہ اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما، آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا، محبت الفت کا ذریعہ بنا، جس کی جو جائز مراد ہو اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی دنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالی بہت مبارک کرے بھائی. آپ ویپ کیا ہوتا ہے؟ ویپ کیا ہوتا ہے؟ سگریٹ کی طرح ہے، مجھے نہیں پتا یہ ہے کیا بھائی، ایسا نہ چرس بھری ہوئی اس کے اندر، حقے کی طرح ہے، اب مجھے نہیں پتا اس کے اندر کیا ہے بھائی. تو سگریٹ تو مکروہ ناپسندیدہ ہے. اچھا سائڈ سے بال صحیح کر لیں. یہ میک اپ ڈیزائنر ہوتے ہیں نا، ہوتا ہے نا اس میں اسٹوڈیو میں. اچھا بھائی، مفتی صاحب جس مدرسے میں پڑھتے ہیں وہاں عربی زبان بولنے کا ماحول ہے، ہمارے اساتذہ کرام کہتے ہیں کہ عربی کا اہتمام کرو، ہمیں عربی کی قدر کیجئے. کیا کروں میں، سمجھ میں نہیں آئی، پوچھا ہے یا رپورٹ پیش کی ہے؟ ہماری نظر میں قدر کیسے آئے گی عربی کی؟ تو مدرسے میں چلے گئے آپ عربی سیکھنے کے لیے، اس قدر آ گئی، آپ کام کو فوکس کرو، یہ نہیں سوچتے رہو کہ کیسے آئے گی. آپ کو جو قانون بنائے کہ عربی میں بات کریں تو اس کو فالو کریں. عربی انگلش کے بعد بہت بڑی زبان ہے، چھوٹی زبان نہیں ہے. یعنی انگلش کے بعد کا مطلب یہ کہ ویسے بڑی زبان تو انگلش نہیں ہے، اور بھی زبانیں ہیں جو انگلش سے بھی بڑی ہیں، لیکن کچھ زبانیں ایسی ہوتی ہیں جو پھیلی ہوئی ہوتی ہیں دنیا میں، ایسا کام کرتی ہیں کہ دنیا کو جوڑنے کا کام کرتی ہیں. ان میں سب سے پہلے انگلش ہے، اس کے بعد عربی ہے، اور اردو بھی ہے. آپ کو اردو، ہندی، اردو ایک ہی چیز ہے پوری دنیا میں نظر آئے گی، لیکن اردو دانوں نے اردو کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے. میں یورپ گیا ہوں، چھوٹی چھوٹی زبانیں ہیں، تھوڑے تھوڑے لوگ ہیں ملکوں کے، اپنی زبانوں میں تعلیم، اپنی زبانوں میں سب کچھ، لیکن ہماری اتنی بڑی زبان ہے، اردو ہندی ملا کے دیکھا جائے اتنی بڑی زبان ہے، اور پھیلی ہوئی بھی ہے. یعنی آبادی کے لحاظ سے بھی انڈیا پاکستان کی آپ آبادی دیکھ لو، چائنا سے زیادہ ہے دونوں ملکوں کی ملا کے، اور بنگلہ دیش میں بھی بہت زیادہ اردو سمجھی، بہت علاقوں میں سمجھی جاتی ہے اردو. کتنا بڑا اس کا حجم ہے، لیکن آپ دیکھو اس کے ساتھ کیسا سوتیلا پن ہے، کیسا بالکل ہی آہستہ آہستہ فنا کیا جا رہا ہے اس کو. بہت غلام قوم غلامی ہوتی ہے، جو غلام ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی غلامانہ سوچ سے باہر نہیں نکل سکتی. یورپ میں اتنی اتنی سی زبانیں ہیں، اتنی اتنی سے لوگ ہیں، لیکن ادھر کی زبان ادھر نہیں، ادھر کی ادھر نہیں. ان کے سائنٹسٹ بھی انہی زبانوں میں پیدا ہوتے ہیں. ہمارے تو اتنی، ہمارا کراچی ایک پوری دنیا ہے بھائی، کہ پنجاب میں کتنی آبادی، کے پی کے، اور پھر بلوچستان، اور پھر انڈیا، دہلی، دلی، یو پی، یہ سارا اردو سمجھتا ہے. ہندی اردو ایک ہی چیز ہے، پہلے تو یہ دماغ سے فضول چیز نکالیں کہ ہندی الگ زبان ہے، اردو الگ زبان ہے. یہ سیاست دانوں نے فرق کیا ہے، کیونکہ ہندو سمجھتے ہیں کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، ہم نے اردو کو پروموٹ کیا تو یہ مسلمانوں کی عزت ہو جائے گی، اور مسلمان سمجھتا ہے کہ ہندی چونکہ ہندوؤں کی زبان ہے تو ہم نے ہندی کو پروموٹ نہیں کرنا. یہ دونوں ہی بے وقوف ہیں ایک نمبر کے، سمجھ رہے ہو؟ حالانکہ ہندی بھی اردو ہے، اردو بھی کیا ہے، ہندی ہے. دو چار آٹھ دس الفاظ دائیں بائیں لا کے نا، اصل میں زبان کا پتہ چلتا ہے گرامر سے، تو گرامر تو سیم ہے. گرامر کیا ہے؟ سیم ہے دونوں زبانوں کی، تو گرامر سے پتہ چلتا ہے کہ ایک زبان ہے کہ الگ الگ زبان ہے. گرامر ہے، یہ کیا ہے، ہندی میں بھی کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ اردو میں بھی یہی ہے، یہ کیا ہے. تو جو اصطلاحی الفاظ ہیں اس کے لیے جو اصل میں زبان جو تھی ہندی اس میں عربی فارسی تھی, تو انہوں نے عربی فارسی کو نکال کے اس میں جو دوسرے زبان کے الفاظ ڈالنا شروع کر دیے ہیں اس میں. تو میں بہت افسوس ہوا ہے کہ ہندو ڈاکٹر ہیں, بہت اچھی ان کی میڈیکل ریسرچ بہت اچھی ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہے, انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. پھر انہوں نے کہا میں نے اردو کا لفظ استعمال کیا, اصل میں بچپن میں خیر مقدم ہی سنا ہوا ہے, تو پھر وہ ہٹا کے نا ہندی کا لفظ, یعنی گویا معذرت کا لہجہ اختیار کیا کہ میرے منہ سے خیر مقدم نکل گیا. یار یہ کتنی بڑی زیادتی ہے یار, اتنا پیارا لفظ تمہاری زبان سے نکلا ہے اس کو لگا کے پھر دوسرا لفظ لے کر آ رہے ہو جو زیادہ تر لوگ سمجھ ہی نہیں رہے. تو یہ غلام قوم, چونکہ ہندو بھی غلام ہے ہم بھی غلام رہے ہیں, تو غلاموں کے یہ غلاموں والی باتیں ہی سوٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ اس فضول چیزوں سے کبھی آگے نکل ہی نہیں سکتے کہ اگر خوش آمدید کہہ دیا تو چونکہ خوش آمدید ہے تو اب یہ کیا ہے, تو تم جو انگلش کے الفاظ ڈال رہے ہو وہ کون سا تمہارے الفاظ ہیں. تو اگر یہ انڈیا پاکستان آپس میں محبت سے رہ لیں, تجارت کو فروغ دیں اور زبانوں پہ سمجھوتا کر لیں کہ یار وہ تم اس کو ہندی کہہ دیا کرو ہم اردو کہہ دیتے ہیں, ہے ایک ہی چیز, تو کتنا اچھا ہو جائے گا, کتنا اچھا ہو جائے گا نا. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں, میں مسقط گیا, سعودیہ گیا, وہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ اردو بول رہے ہیں. میں نے کہا آپ نے اردو کہاں سے سیکھی, کہہ رہے ہیں ہندی فلموں سے سیکھی ہے, انڈیا کی فلموں دیکھتے تھے تو اردو سیکھ گئی. میں نے کہا انڈیا کی فلمیں دیکھ کے تو آپ کو ہندی آنی چاہیے نا, اردو کیوں آ گئی؟ انہوں نے کہا جو زبان آپ بول رہے ہیں وہی فلموں میں وہی آ رہی ہے, تو جو آپ ہندی بولو یا اردو بولو یہی سیکھ ہے جو آپ بول رہے ہو, اس کا مطلب ان کی فلموں میں بھی اردو ہی ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے, جس کو وہ ہندی بولتے ہیں, اور ہماری فلموں میں ہندی ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں, اردو بولتے ہیں. تو ڈرامے بازی چھوڑ دینی چاہیے, یہ مسئلے مودی کے اور ہمارے سیاست دانوں کے ہیں. تو سیاست دانوں کی بھینٹ اپنے آپ کو مت چڑھاؤ, آپ کبھی انڈیا پاکستان کی دشمنی کی باتیں نہ کیا کرو, اس سے دونوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ایک نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے, میں نے بھی کہیں بیان کیا ہوا تھا کہ انڈیا پاکستان کو لڑائی چھوڑ کے نا, لڑائی معاف کرو, اللہ کا گھر صاف کرو, یہ کام کرنا چاہیے. دونوں ملک, دونوں کو دوستی سے دونوں کا فائدہ ہے, اتنی ترقی کر جائیں گے نا دونوں, اگر دونوں میں صلح ہو جائے کہ آپ کی سوچ ہے, بین الاقوامی طاقتیں نہیں صلح ہونے دیتی. پیچھے انڈیا کے اسرائیل کھڑا ہے, وہ کبھی بھی نہیں پاکستان سے دوستی لگانے دے گا, پھر یہاں کی اپنی سیاستیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر دونوں ملک دوستی کا ہاتھ بڑھا لیں, تجارت کو فروغ دیں, بولے میں تمہاری زبان ہندی ہے تو وہ بھی اردو ہی ہے, انڈیا میں اس کو ہندی کہا جاتا ہے اور یہاں کیا کہا جاتا ہے, اردو کہا جاتا ہے, تو ایک ہی چیز ہے یار, سمجھوتا کر لو, تم اردو کہہ دو ہندی کہہ دو, لیکن دونوں مل کے زبان کو فروغ دیں گے تو ہماری بڑا فائدہ ہوگا ہمیں اس سے. تو اگر یہ سمجھوتا کر لے کتنا اچھا ہو جائے گا نا, کہ نہیں ہے مودی صاحب کو ووٹ چاہیے تو جب تک مسلمانوں کے خلاف تقریریں نہیں ہوں گی مودی کو ووٹ نہیں ملے, تو کیونکہ پتہ ہے قوم بے وقوف ہے, لڑوانے والی باتوں پہ ووٹ دے گی, وہ محبت کی باتوں پہ قوم ووٹ دیتی نہیں ہے. حالانکہ نقصان ہندوؤں کا بھی ہو رہا ہے, تجارت نہ ہونے سے دونوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, ڈیفینس پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے دونوں ملکوں کا, ہر دوسرے دن نئے نئے میزائل بنا بنا کے ایک دوسرے پہ دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں, تو دونوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اس میں, اکانومی دونوں کی تباہ ہو رہی ہے. اب کئی میں نے یہ بیان کیا, نیچے کسی نے کمنٹس کیے, کسی ہندو نے, کہ پھر تمہیں الگ ملک بنانے کی دو قومی نظریے کی ضرورت کیا تھی, وہی شرارت والی بات نا بھائی. دو قومی نظریے کا مطلب یہ تھا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں ہمیں ایک اسٹیٹ اسلامی چاہیے, تو جس کو اسلامک اسٹیٹ چاہیے وہ ادھر آ جائے, جس کو اسلامک اسٹیٹ نہیں چاہیے سیکولر اسٹیٹ چاہیے وہ وہاں رہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہو ایک سیکولر اسٹیٹ ہو دونوں ملکوں کے تعلقات اچھے ہو جائیں, کیا خیال ہے, یہاں اسلام نافذ ہو وہاں سیکولرزم ہو, تو اس میں کیا جا رہا ہے, اس کا آپس کی لڑائی سے کیا تعلق ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ بنا نہیں بنا, وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن اسلامک اسٹیٹ اور سیکولر اسٹیٹ آپس میں بہت سارے تجارت میں تو دونوں کے مشترکہ مفاد ہیں نا. ابے آپ کی دکان پہ کوئی ہندو آتا ہے چیز خریدنے کے لیے تو آپ تو بیچو گے یار اس کو, اور ہندو کی دکان پہ مسلمان آتا ہے وہ بیچے گا, بولے بھائی تجارت تو سب سے کرنی ہے. تو بہت ساری چیزیں دونوں میں کامن ہیں, تو اس کامن چیزوں پہ اکٹھے ہونا چاہیے, لیکن ایسا ہوتا نہیں اور بہت ہی مشکل ہے. سیاست دان کبھی بھی وہ ان کو پتا ہے منجن جو بکے گا نا ووٹ کا منجن, وہ لڑوا کے بکتا ہے, وہ دوستیاں کرا کے نہیں بکتا, تو لڑوانے سے بکے گا تو وہ اس لیے ایسے ہی چلنے دو. لیکن یہ زبان ہے کہ اس کی حفاظت کرو بھائی, اردو کی, انگلش ضرور سیکھو بین الاقوامی زبان ہے, عربی تو اور ہمارے مذہب کا حصہ ہے وہ تو لازمی سیکھنی چاہیے ہمیں, لیکن اپنی زبان کی بھی حفاظت کرو, اردو بھی کوئی معمولی زبان نہیں ہے, بہت دنیا میں عربی کتنے, دبئی میں کتنے لوگ اردو جانتے ہیں, کیونکہ ہر دوسرا بندہ اردو اسپیکنگ ہے. इतनी। और कमाल की बात है, सऊदी अरब में साइन बोर्ड फारसी में मिलेंगे, उर्दू में खत्म हो रहे हैं। हालांकि फारसी तो इतनी सी है यार, उर्दू के कहां मुकाबला कर सकती है। हमारे हुक्मरानों ने उर्दू को प्रमोट करने की इतनी सी भी कोशिश नहीं की है कि सऊदी गवर्नमेंट से कह देते आपने जगह जगह यहां साइन बोर्ड इंग्लिश में लगाए, फारसी में है, तो यार उर्दू को भी तो करो। उर्दू में पुराने पुराने हैं, अब नए नहीं आ रहे ज्यादा, क्योंकि हज उमरा तो सबसे ज्यादा उर्दू स्पीकिंग करते हैं, चाहे इंडिया के हों या पाकिस्तान के हों। जो कौम सबसे ज्यादा हज उमरे कर रही है उनकी जबानों में साइन बोर्ड नहीं मिलेंगे आपको, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जबानों के साइन बोर्ड मिल जाएंगे। तो हमारे हुक्मरानों ने किया ही नहीं है, आवाज ही नहीं उठाई है कि अपनी कौम के लिए, अपनी जबान के लिए कुछ करें। ये बाहर मुल्कों में जाते हैं तो इनको उर्दू बोलते हुए शर्म आ रही होती है। चाइनीज का जो सदर है चाइना का, वो चिंग पोंग कर रहा होगा बैठ के, बेहोश हो जाए पूरा मजमा। जापनी आके चांग किंग शिंग शांग कर रहा होगा। हमारे वाले को पता नहीं क्यों मौत आती है यार उर्दू बोलते हुए। भाई तू भी उर्दू बोल ले, ट्रांसलेशन कर देगा, लेकिन वो फिर इंग्लिश में टूटी फूटी बोलेगा, लेकिन बोलेगा क्या। देखो हजरत मुफ्ती तकी साहब को बेहतरीन इंग्लिश आती है, बेहतरीन इंग्लिश। बयान किस में करते हैं? उर्दू में। नॉर्मल बात किस में करते हैं? उर्दू में। हमारे एक दोस्त थे, मैंने उनसे कहा यार मैंने घर में मुर्गी पकी, आ जाओ। उन्होंने कहा यार मुर्गी नहीं, मुझसे अब चिकन बोला करो। मैंने कहा जो नई नई इंग्लिश सीखता है ना वो इसी तरह कर रहा होता है, नई नई इंग्लिश आई है तो वो इसी तरह की बातें कर रहा होता है। हमने कहा हम तो देसी लोग हैं भाई, मुर्गी खाते हैं, चिकन आप खा लेना, ठीक है ना। हालांकि मुझे भी पता है चिकन, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है मुर्गी को चिकन कह दिया या मुर्गी कह दी, लेकिन अगर कोई मुर्गी किसी के मुंह से निकल गया है तो उसको कहना कि चिकन बोलो मुर्गी ना बोलो, ये गुलामाना सोच की क्या है। मैं नहीं कह रहा जो चिकन कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, बाद लोगों की जबान पे चिकन आसान लगता है, उनको मुर्गी खाना मुश्किल लगता है, चिकन खाना आसान लगता है, तो चिकन बोल दो। लेकिन अगर कोई मुर्गी बोल रहा है तो यार उसका ये कहना कि यार ये बुरा लफ्ज है, तो ये मैंने कहा आपको नहीं सीखता है ना, तो इंसान फिर ऐसे ही कर रहा होता है, ठीक है। तो गुलामाना सोच है इतनी ज्यादा है तो ये क्या कौम तरक्की करेगी, जिससे इतनी बड़ी जबान से हिफाजत नहीं हो पा रही, उसकी मोहब्बत नहीं हो पा रही, उसकी हिफाजत की फिक्र नहीं हो पा रही है। तो आधी जिंदगी इंग्लिश सीखने में लग जाती है, उसके बाद पढ़ेगा क्या वो बैठ के। फिलिस्तीन के जो हालात चल रहे हैं इसमें, हम इस पर बहुत दफा रिकॉर्ड करवा चुका हूं मेरे भाई, दुआ करें बस, और जो जा सकता है जाए। अर्ज करता हूं मियां बीवी दोनों घर का हिस्सा अगर हो, दोनों घर का हिस्सा होते, अगर मियां कारोबार करता हो, बच्चों को पालता हो, घर के अखराजात करता हो, बच्चों की तालीम और बीवी नौकरी करती हो, अपने पैसे जमा करती हो, बीवी की हैसियत बन जाए, और जब मियां बूढ़ा हो जाए तो फिर बच्चों को कह रही हो कि तुम्हारे बाप कुछ भी नहीं किया, बच्चे बाप से नफरत करते हैं, क्या बीवी का माल का बराबर का हिस्सा सौदा, क्या लिखा भाई, क्या बीवी का, उन्होंने पता नहीं क्या लिखा, मियां का। देखो ये आजकल मियाओं की, बहुत सारे मियाओं की रिपोर्टें हैं कि बुढ़ापे में बहुत ही बुरे हालात होते हैं आदमी के घर में। आप अभी जवान हो, हट्टे कट्टे हो, खिला रहे हो पिला रहे हो, तो सब कुछ सेट चल रहा है, ठीक है। फिर जब आप हो जाओगे बुढ़े और जब आप हो जाओगे रिटायर, तो फिर आपकी हैसियत घर में ये होगी कि खांसने के अलावा इस बुढ़े का कोई काम नहीं। पूछता है कहां आ रहे हो, कहां से जा रहे हो, तो जो शुक्रगुजार औरत होती है, शुक्रगुजार औलाद होती है, वो कहती है इसने सारी जिंदगी हमें खिलाया पिलाया, गैस बिजली का बिल दिया, हमारा ख्याल किया, अब हम इसकी कड़वी घसीली बर्दाश्त करेंगे। जो इज्जतदार औरतें होती हैं, और हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी इज्जतदार भी हैं, खासतौर पर जो मेरा बयान सुन रही हैं, तो वो क्या करती हैं, जब बेटे और बाप का इख्तलाफ होता है तो वो बाप का साथ देती हैं, यानी अपने शोहर का। वो कहती हैं भाई मेरे लिए ये बुढ़ा पहले है, ये मेरी जिंदगी में पहले आया है, मुझे शेल्टर इसने दिया है, मैंने तुम्हें जो इज्जत के साथ पाला तो किसके शेल्टर की वजह से, इसकी वजह से, लिहाजा बेटा मैं इसका साथ दूंगी, मैं तुम्हारा साथ, बोलो नहीं। ये गैरतमंद औरतें होती हैं कि भाई मैं ये मेरे लिए पहले है, औलाद बाद में है, ये क्या कहलाती हैं, गैरतमंद औरत। और जो गैरत लेस खवातीन होती हैं, उसको जब नचोड़ लिया सारी जिंदगी, अब वो किसी काम का नहीं है, तो बेटों के साथ मिलके बाप को औलाद शोहर को सताती हैं। वो हर वक्त शोहर बेटों के सामने शोहर की बुराई कि तुम्हारे बाप ने तो ये नहीं किया, तुम्हारे बाप ने तो यूं नहीं किया, तुम्हारे बाप ने तो, मैंने तो सिसकियां ले ले जिंदगी गुजारी है, ऐसे रोती हैं, हाय मैंने तो ये। तो भाई जब आपको आप तलाक ले लेती ना उस वक्त इससे, بھائی میں طلاق لے کے کیا کرتی، میں ظالم آدمی سے چھٹکارا، میں کہاں جاتی؟ تو یہ اس کا ہیڈیک تھوڑی ہے، یہ تو آپ کا ہیڈیک ہے نا، آپ چلی جاتی طلاق لے کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے میں طلاق لے کے جاتی تو بہت ہی بدحال ہو جاتی، اس نے مجھے اس بدحالی سے بچا لیا. تو یہ بڑا احسان ہے، یہ کم احسان ہے کیا؟ ٹھیک ہے اس میں کچھ عیب ہیں، لیکن اس کا ہونا آپ کے لیے زیادہ مفید تھا، اسی کو تو احسان کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی خواتین یہ کہتی ہیں ہم نے تو بڑھاپے میں مشکل، ہم نے تو ساری زندگی اس عذاب میں گزار دیا اس بندے کے ساتھ. تو میں ایسی خواتین کو کہتا ہوں کیوں گزار دیا آپ نے؟ اس وقت طلاق لیتی مفتی صاحب طلاق لے کے کہاں جاتی میں؟ اس کا مطلب شیلٹر کس نے دیا ہے آپ کو؟ اس کی ضرورت تھی نا آپ کو. ٹھیک ہے کچھ خامیاں تھیں، لیکن اس کا وجود نہ ہونے سے بہرحال بہتر تھا. آپ کو ضرورت تھی اس کی، تو اس وقت نچوڑ لیا اس کو کہ جی میں طلاق لے کے کہاں جاؤں گی. کمبخت نے منحوس نے گھر تو دیا ہوا ہے نا، کم از کم، کم از کم منحوس گیس بھی لے گا، بل تو دے رہا ہے، کم از کم بچوں کا باپ تو ہے نا. لیکن یہ مصیبت، اس سے فائدے تو ہو رہے ہیں نا، اس کا مطلب اس کی خیریں اس کی خامیوں سے زیادہ تھیں. آپ کے لیے اس کا ہونا نہ ہونے سے زیادہ ضروری تھا. تو اس کا مطلب اس کی نیکیاں پر اس کی برائیوں کا پلڑا کیا ہے؟ جھابی ہے. اب جب آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں رہی تو آپ چھوڑ رہی ہو اس کو، یار اس کو نظر انداز کیا ہوا ہے، خدا کی قسم یہ غیرت نہیں ہے. اور یہ ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، بہت زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ گوروں میں ایسا ہوتا ہے. تو اب یہاں بھی ہونا شروع ہو گیا ہے. یو کے سے میرے پاس دو چار بوڑھے آئے بےچارے، کہتے ہیں صاحب ہم لوگ کی تو زندگی، ہم نے بچوں کو کھلایا پلایا، عورت نے بھی ہمیں نچوڑا، ہم بڈھے ہو گئے تو ہمیں تو کوئی ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے کہا رہو، مزے مزے ہیں، پھر رہو اور تھوڑا اور ٹائم گزار لو. مجھے پتا ہے سب ایسے نہیں ہوتے اور سب عورتیں بھی ایسی نہیں ہوتی ہیں. تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ بڑھاپے میں پتا چلے گا تمہیں شوہر سے کتنی محبت ہو. جب بیٹے مسئلہ کریں بولیں بھائی باپ کے سامنے بیٹا اونچی آواز سے بات نہیں کرتے، خدا کی قسم دل خوش ہو جاتا ہے یار ایسی عورت کا سن کے. جب اس کو ضرورت نہیں ہے نا، اب شوہر کی بڈھا ہو گیا نا، تو اب وہ کرے گی تو اب بولو بھائی میرا شوہر پہلے ہے، بیٹا میں شوہر کی مرضی کے خلاف تمہیں نہیں جانے دوں گی، میں شوہر کا ساتھ دوں گی. مرد کا دل بھی باغ باغ ہو جائے گا. یہیں ایک اور مسئلہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اور میں بار بار بتا رہا ہوں خواتین ایک تو الٹے سیدھے کمنٹ بہت کرتی ہیں، میں آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں بھائی، ساری عورتیں ہماری مائیں بھی تھیں یار، ہم نے بھی اپنے ماؤں کے ساتھ ٹائم گزارا ہے، انہوں نے ایسا نہیں کیا. اور بہتوں کی مائیں نہیں کر رہی ہوتی، میں تو جو کرتی ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن بعض ہوتی بھی ہیں تو ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں. بہت سی الحمدللہ بڑھاپے میں شوہر کا ساتھ دیتی ہیں، اور بعض شوہر واقعی ظالم بھی ہوتے ہیں، انہوں نے ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہوتے، کچھ بھی ذمہ داری ان کو. تو خواتین کو ہم اسی وقت کہتے ہیں بھائی ان سے علیحدگی لو، آپ کیوں ان کے ساتھ ٹائم اپنا زندگی کیوں برباد کر رہی ہو. تو ایک اور مسئلہ بہت اچھی طرح، بس یہ مسئلہ بتا کہ میں بات ختم کرتا ہوں. یہ آج کل ایک بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ شوہر ساری زندگی کماتا ہے، بیگم ہاؤس وائف ہوتی ہے، مرد سربراہ بن کے کھلاتا رہتا ہے کھلاتا رہتا ہے کھلاتا رہتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے. جو شریف مرد ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو الحمدللہ جو ہمارے ہاں ایک سوسائٹی میں ایک کلچر ہے، جو اسلام کا حکم بھی ہے کہ بھائی کھلائے گا کون مرد، باہر جا جا کے دو دو سال آمدنی بھیج بھیج کے کھلا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کچھ دنوں میں بیٹے کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں اور مرد ہو جاتا ہے ریٹائر. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اللہ کرے یہ کس دل میں اتر جائے آپ لوگوں کے. مرد کیا ہو جاتا ہے؟ ریٹائر. اب اس کے ہاتھ میں پیسہ بالکل ختم. اب بیٹے کیا کرتے ہیں؟ کمائی ماں کو دینا شروع کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض لوگ کس کو دینا شروع کر دیتے ہیں؟ ماں کو. شوہر محتاج ہو جاتا ہے. شوہر کیا ہو جاتا ہے؟ محتاج. بیٹے کچھ خرچہ اس کو بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جو گھر کا چلانے کا خرچہ ہے وہ کس کو دیتے ہیں؟ ابا کو پاکٹ منی تو دے دیں گے، لیکن پورے گھر کا خرچہ کس کو دیتے ہیں؟ ماں کو. اس سے خوب سمجھ لو، یہ جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے. اس سے باپ کا جو ہے نا وہ پاگل ہو جاتا ہے ڈپریشن سے، وہ اس کو اندر اندر سے یہ چیز گھن کی طرح کھاتی ہے کہ یار آج تک تو میرا ہاتھ اوپر رہا تھا، اب میں خرچے پانی کے لیے محتاج ہو گیا اس گھر میں کس کا؟ بیوی کا. تو اس لیے جب بیٹا کمانے کے قابل ہو جائے نا اور ابا ریٹائر ہو جائیں اور بیٹا باہر چلا گیا، تو گھر کا سارا خرچہ باپ کے ہاتھ میں بھیجے وہ، کہ جیسے آپ پہلے پورا گھر چلا رہے تھے اب بھی کون چلائے گا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ ابا آپ چلائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ سارا خرچہ باپ کے پاس بھیجے، ورنہ وہ جیتے جی مر جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار مجھے، یعنی اب مجھ پہ اعتماد ختم ہو گیا ہے کیا؟ تو ایسے موقع پہ بعض خواتین سارا پیسہ قبضہ کر لیتی ہیں، بھائی خرچہ میرے ہاتھ میں بھیجو، تو بیٹا پھر ماں کو بھیجنا شروع کر دیتا ہے. تو ہوتا باپ بعض دفعہ لڑتا نہیں، اندر ہی اندر گھل گھل کے ختم ہو جاتا ہے وہ، کیونکہ مرد کے لیے جس نے کھلایا ہو نا، جو بیوی کی آمدن کھا رہا ہو اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو تو نہ بھیجیں آپ. جو جن کی بیگم جاب کر کے گھر چلا رہی ہو، اس میں تو پھر بچوں کو چاہیے کہ جب ابا ریٹائر ہو جائیں تو وہ اماں ہی کو خرچہ بھیجا کریں. جو آج تک اماں نے اٹھایا تو اب بھی کون اٹھائے گا؟ اماں. میں ان باپوں کی بات کر رہا ہوں جو بیوی کی آمدن نہیں کھاتے، ساری زندگی وہ کیا کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، اس پہ دل پہ آرے چلتے ہیں پھر ان چیزوں سے کہ اب مجھ پہ اعتماد نہیں، اب میں کیا کھا جاؤں گا سارا. لوگ کہتے ہیں ابا گھر میں خرچ نہیں کرتے. یار ابا نے اب تک تو ابا نے ہی خرچ کیا ہے نا، تو کیوں نہیں خرچ کرتے یار؟ وہ تو سارا خرچہ کس کے ہاتھ میں بھیجا کرو؟ ابا کے. اما کو نظر انداز مت کرو، اما کو الگ سے پاکٹ منی دے دو. لیکن جو نان نفقہ، آلو پیاز ٹماٹر گیس بجلی، یہ جو پورا گھر چل رہا ہے نا، اس کے لیے اگر بھیجنا ہے تو اب بھی، پہلے بھی گھر کے سربراہ ابا تھے، اب بھی کون ہے؟ اب بھی ابا ہی ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ابا ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں، میں نہیں کہہ رہا کہ اما کو نظر انداز کرو، کچھ پاکٹ منی اما کے لیے الگ سے باندھو، دیتے رہا کرو. نان نفقہ بھی ابا ہی اٹھائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پاکٹ منی اما کو الگ سے باندھو. اما بیمار ہوتی ہیں ان کا علاج کراؤ. اما روز اگر غصہ کرتی ہیں بعض اماں ہیں، مجھے دو، ادھر کیوں دے رہا ہے تو؟ تو بولو بھائی اما گھر کا سربراہ پہلے بھی ابا تھے، تو اب بھی کون ہوگا؟ ابا ہی ہوں گے. یہ بہت آرے چلتے ہیں مرد کے دل پہ، جو غیرت مند مرد ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. تو آپ نہیں سمجھ سکتے اس کی، یہ جن کے ساتھ گزرتی ہے وہ ان کی دل کی پکار ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. وہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے، اور ہماری سوسائٹی میں وہ دکھڑا سنائے گا نا تو اگلا کہے گا تو کیا ہے تجھے کھانے سے مطلب ہے نا، بیوی کو بھیج دیا تو تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے، تجھے پیسوں کی محبت ہے گیا تیرے دل میں؟ وہ بجائے اس کو کہ وہ اور الٹا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بیٹوں کو چاہیے جب کما کے بھیجیں تو اما کو الگ سے پاکٹ منی ضرور دیں، جیب خرچی دیں، ان کا خیال کریں، لیکن جو بیسک گھر کا نان نفقہ ہے وہ خرچہ کس کے ہاتھ میں آنا چاہیے؟ ابا کے ہاتھ میں. ہاں، ابا اگر اپنی ذمہ داری پہلے پوری نہیں کرتے رہے، بعض ابا ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ترسا ترسا کے بیوی کو رکھا ہوتا ہے، بچوں کو رکھا ہوتا ہے، سٹے میں، چرس میں اور آوارہ گردی میں اڑا رہے ہیں، وہ پھر ایک الگ بات ہے. ان میں پھر ابا کو نہ دو، ان میں اما ذمہ دار ہے، تو بھائی اما کو دے دو. کیونکہ ابا کو بھیج دیا تو یہ پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ ایسے کیسز آئے ہیں کہ ایک آدمی ابا کو دے رہا تھا پیسے، ابا بجائے گھر چلانے کے ابا غیر اخلاقی سرگرمیوں میں مبتلا تھے، چرس پی رہے تھے، لڑکیوں میں انوالو، بعض لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے غلط، وہ گھر میں پھر فاقے پڑ رہے ہیں، سارا پیسہ ادھر ادھر برباد ہو رہا ہے. تو ان کو تو ہم یہی کہتے ہیں یار اماں سمجھدار ہیں، کس کو بھیج دو بھائی پیسے؟ اماں کو بھیج دو، ابا کو اتنے دو کہ بس گزارا کریں، ایسا نہ ہو کہ پھر سٹے لگانا شروع کر دیں، زیادہ پیسہ آئے گا تو عیاشی میں لگ جاتے ہیں. تو جو غلط قسم کے ابا ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو نارمل ابا ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داری جنہوں نے پوری کی ہے، تو ریٹائرمنٹ کے بعد بیٹا جب کما کے بھیج رہا ہے تو ساری ارننگ کہاں بھیجے گا؟ وہ باپ ہی کے ہاتھ میں بھیجے گا. اور اماں کو محبت سے سمجھا دے کہ اماں ساری زندگی ابا نے کھلایا ہے نا، تو اب بھی ابا ہی کھلائیں گے، کیا جا رہا ہے اس میں؟ آپ نے ساری زندگی ابا سے ہی لی ہے تو اب بھی لے لیں. اماں کہتی مجھے تو تمہارے ابا سے مانگتے ہوئے موت آتی ہے، یہ تو دیتے نہیں ہے. تو بھائی اب تک بھی تو دے ہی رہے تھے نا. تو عورت بھی اس پہ فخر کرتی ہے. دیکھو میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے، جو ان کے نائب تھے نا میرے، جو ابھی جو شیخ ہیں، ان کا بہت سارا ان کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کی طرف سے اتنا پیسہ کاروبار میں لگانا چاہتا ہوں، آپ کی طرف سے پیسہ میرا ہی ہوگا لیکن آپ کو دے کے میں لگواؤں گا، تاکہ جو ارننگ آئے آپ جو ہے نا خود آپ کا پروفٹ شروع ہو جائے. تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت اب تک آپ نے ہمیں کھلایا ہے، آپ کی کفالت میں ہوں، تو میں چاہتا ہوں جو میری طرف سے آپ پیسہ لگا رہے ہیں نا وہ اپنی طرف سے ہی لگا لیں. چاہتا ہوں بھائی جب تک اتنا عرصہ آپ نے کھلایا ہے تو جب تک آپ زندہ ہیں آپ ہی کھلاتے رہیں. یہ خاندانی ہونے کی، بولو، اس سے بڑے کا دل اتنا چوڑا ہو جاتا ہے، اتنا چوڑا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے جو نہیں دیا نا وہ بھی لے لے بھائی تم اس سے، سمجھتے ہو؟ تو اپنے بڑوں کے، تو عورت کو بھی چاہیے کہ شوہر کے آگے اکڑ نہ دکھائے. وہ کہے بھائی ساری زندگی آپ کے ہاتھ سے ہم نے کھایا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اب بھی بیٹا آمدن ابا کو بھیج دیا کرو، ابا ہی سے لوں گی میں، سمجھ رہے ہو نا؟ تو اس سے ابا کا دل کیا ہو جائے گا؟ ابے بول لو نا، ابھی تم بڈھے ہوئے نہیں ہو، تم پہ گزری نہیں ہے، جب ہوگے تو میری یہ باتیں کلپ سن سن کے خون کے آنسو رو گے کہ ہائے ہمارے حالات مفتی صاحب کو پہلے سے کہاں سے پتہ چل گئے. تو جب عورت کہتی ہے نا بھائی تمہارے بیٹا تمہارے ابا نے ہمیشہ کھلایا پلایا، تمہیں پڑھایا بھی ان کی آمدن سے، ٹھیک ہے، عورت کا بھی کردار ہے، صبح ناشتے کے لیے تو اماں اٹھاتی ہے. اماں کو میں نظر انداز کرنے کا نہیں کہہ رہا، اماں تو اماں ہے یار، اللہ نے اس کے تین گناہ بتایا ہے زیادہ. मैं तो पैसों के लेन देन की बात कर रहा हूं, मां के हक की वजह से बाप को नजरअंदाज करना तो ठीक नहीं है ना। ना बाप की वजह से मां को नजरअंदाज करो, ना मां की वजह से बाप को। तो अगर खर्चा बाप को नहीं भेजोगे वो तो जीते जी मर जाएगा, मां को नहीं भेजोगे इतना मसला नहीं होगा, सारी जिंदगी वो तो हाउस वाइफ रही है ना, खिलाने वाला तो आदमी है। तो ये मर्दों का हक है घर की सरबराही करना और पैसा खर्च करना, ये किसको अल्लाह ने राइट दिया है? ये मर्दों, मर्द ये नहीं करेगा तो वो गैरतमंद तो मर जाता है। ऐसे भी लोग मैंने देखे, बेटा कमाता है कहते हम नहीं चाहिए, भाई हम बाप है, हमें नहीं चाहिए। उनको लगता है कि बेटा शायद एहसान समझ रहा है पैसा देने पे, तो कहते हैं नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो गैरतमंद होते हैं, उनको जरा सा दिल में वहम भी आ जाए ना कि बेटा एहसान समझ के दे रहा है, कहते तू हमारा बाप थोड़ी है, तू हमारी क्या है औलाद, जा। हमारे हजरत के बेटों ने बड़ी गाड़ी ले ली, हजरत ने उससे भी बड़ी ली। किसी ने कहा इतनी बड़ी, उन्होंने कहा ताकि पता चले बाप मैं हूं। ठीक है ना, ऐसा ना लोग इनकी गाड़ी देख के इनको मेरा बाप समझना शुरू कर दें। तो ये गैरतमंदों की बात मैं कर रहा हूं, जो गैरतमंद मर्द होता है उससे नहीं ये होता कि घर का सौदा खर्चा सारा पहले मैं उठा रहा था, अब वो मेरी बेगम उठाना शुरू कर दे और बच्चे उसके हाथ में भेजें, उसको फिर बच्चों से नफरत पैदा होना शुरू हो जाती है, बीवी से भी नफरत पैदा होना, बोलता कुछ भी नहीं है क्योंकि सोसाइटी में सुनता कोई नहीं, उल्टा इसी को गालियां पड़ेंगी, लेकिन उसकी ये गैरत किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं है। तो माँ को भी चाहिए कि वो कहले बेटा अब तक सारा खर्चा बाप ने उठाया तो बेटा इन्हीं के पास भेज दिया करो। लेकिन ये जब है जब माँ को शौहर पे एतमाद हो और शौहर को बीवी पे और बच्चों पे, जहां एतमाद ही नहीं है, सब चोरी लूट खसूट में ही लगे रहे, फिर वहां जैसे चलता है चलने दो। ये खानदानी लोगों की बात कर रहा हूं, घटिया लोगों की बात नहीं कर रहा। घटिया से मेरी मुराद वो मर्द जिसने बीवी पे खर्ची ना किया हो, बचा बचा के ही रखता हो, पान गुटकों में उड़ाता हो, वो भी घटिया है। और औरत भी को भी बस पैसा चाहिए, शोहर को नचोड़ना था नचोड़ लिया, तो वो तो चाहेगी यार ये मरे लेकिन अब पैसा मेरे पास आए, तो वो भी घटिया है। और जो बच्चा है वो कह रहा है कि यार अब्बा ने हमें पैदा करके पाल पोस के बस गुजार लेना अपनी जिंदगी, कभी पान गुटके के पैसे दे देंगे, खर्चा भेजने की जरूरत क्या, कमाओ खाओ, तो भी घटिया है। तो वो जो जिसके हाथ में जो लगे वो खा लें, ठीक है ना। खानदानी लोग इसी तरह ही होते हैं, जो मैंने बताया कि मर्द कमाता है, बच्चे बेगम खाती है, बीवी अपनी अलग जिम्मेदारियां पूरी करती हैं, बच्चे जवान होते हैं, उनको पता है माँ के ये हुकूक हैं, माँ के साथ बदकलामी नहीं करनी, खर्च करना है उसके ऊपर, माँ को जरूरत है कुछ गिफ्ट देना है किसी को, फलाना कुछ करना है तो अम्मा को पैसे भेज दिए, ना नफका किसकी जिम्मेदारी है भाई, अब्बा की है। तो बेसिक खर्चा किसकी जेब में जाएगा, अब्बा की। हाँ अब्बा दो नंबर है तो एक अलग बात है, ऐसा उनको मैं प्रमोट नहीं करता, समझ में आ गई बात। अब ये लिखिया हूं मोदी से मेरे बात में जाना था तो, लेकिन अब्बू मना कर रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं भाई? अगर आप बहुत ही बच्चे हैं फिर मना कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप बड़े हो गए हैं तो फिर आप चले जाएं जमात में, अब्बा को प्यार मोहब्बत से समझा दें। मोदी साहब मेरे साथ, यार आजकल राइटिंग इतनी गंदी हो गई है समझ में, दो डकैतियां हो चुकी हैं, तो क्या मेरा डकैत लोगों से लड़ना ठीक है? क्यों नहीं ठीक है, हम तो समझा के थक गए। अब तो यूट्यूब पे वीडियोज आ रही है डाकुओं को मारने की, डाकुओं को मारने जो मारता है इतना जबरदस्त काम करता है, दिल खुश हो जाता है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, अब तो लोगों ने बहुत अकलमंद हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी एक वीडियो आई है, मेडिकल स्टोर में एक डाकू घुसा, बंदे को लूट रहा है, बंदे ने दे दिया। इनका पहले से प्लान था भाई कैमरे लगे हुए हैं, अब तो ये कैमरे क्यों नहीं लगाते आप? सब लोग कैमरे लगाए गलियों में महलों में, अपने खर्चे पे लगाओ ना कैमरे, दुकानों में लगाओ। तो अंदर भी कैमरा था, अंदर बंदा को पहले से बिठाया था पिस्टल देके, यार अंदर कैमरे में देखना क्योंकि कराची में लूट मार है, कोई डाकू आए तो जो भी करना हो कर लेना, उसको पहले समझा दिया जल्दबाजी ना करना वरना वो पहले डाकू आपको मारेगा। तो ऐसे ही हुआ, लूट मार के वो जाने लगे, पीछे से बंदे ने पेल दिया डाकू अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बड़े आराम से डाकुओं को कंट्रोल किया जा सकता है, असलहे वाला लाइसेंस बनाए गली महल्ले में, क्या करें हर दुकानदार के पास एक पिस्टल होनी चाहिए, लाइसेंस हो उसका बाकायदा। तो एक डाकू लूट रहा है तो लूटने दें, जाने लगे तो दो तीन जगहों से फायर होगा, कहां जा सकता है भाई वो, क्या ख्याल है? और पुलिस वाले भी सपोर्ट करते हैं आपको, जब डाकू मारेंगे ना पुलिस को फोन करेंगे, पुलिस कहेगी मेरे खाते में डाल दो हमने मारा है, तो आप डाल दें, आपको क्या जरूरत है, आपको क्या निशाने हैदर लेना है आपने? अब बोलो भाई आपने मारा है सर, तो पुलिस वाले भी खुश हो जाते हैं, अच्छी बात है, डाकू के मरने पर पुलिस को खुशी हो रही है। तो लेकिन डाकू हो, ऐसा ना हो कोई झगड़ा हो रहा हो, कोई खबर उड़ा देते हैं बाद दफा लोग कि ये डाकू है, झूठी खबर होती है, किसी को भी कराची में मारना हो ना पकड़ के बंदा बोले ये डाकू है, लोग समझ लेते हैं, और बंदे बेगुनाह लोग भी इसमें मरते हैं। तो पहले 100% यकीन हो तो फिर नहीं जाने दो डाकू को मेरे भाई। एंड जब वो डकैती हो रही हो ना तो उस वक्त वो बंदूक निकाल के सेल्फ डिफेंस में आपके लिए मारना लीगल है, उसके बाद फिर लीगल नहीं है कि बाद में आपको अगले दिन डाकू मिला तो आपने कहा तू आया था ठा उड़ा दिया, फिर आपके खिलाफ केस हो जाएगा। एंड डकैती के दौरान तो ये लीगल है, उसके बाद फिर ये लीगल नहीं है। شرعن تو جائز ہے کسی بھی وقت مار دو اس کو, ٹھیک ہے نا, لیکن غیر قانونی آپ کے خلاف کیس ہو جائے گا پھر, اور میرے خلاف بھی ہو جائے گا کہ لوگوں کو یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ ڈاکو مار دو. لڑکے کا نام عبد الصمد, لڑکی کی والدہ کا نام ارم, لڑکی کا نام عالیہ, لڑکی کی والدہ کا نام آمنہ, استخارہ نکالنا ہے. بھائی فضول چیز ہے یہ, جو آج کل کے استخارے ہو رہے ہیں یہ وہ استخارہ نہیں ہے جو سنت میں ہے, کچھ بھی نہیں نکلے گا. اماں کا پورے پوری رپورٹیں لوگ اپنی جا کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ نام ہے, یہ ماموں کا نام ہے, چاچے کا نام ہے, تو کیا کرنا ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. اس سے استخارہ ہے, دو رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو استخارے والی کہ اللہ یہ کام بہتر ہے تو مقدر کر دے, بہتر نہیں ہے تو میرے ذہن کو ہٹا دے یہاں سے, مقدر ہی نہ کر, بس کافی ہے, نہ خواب آئے گا نہ کچھ بھی ہوگا. تو دعا ہے, اس پر گوگل پہ یوٹیوب پہ میرا کلپ موجود ہے, مفتی طارق مسعود استخارہ لکھ کے سرچ کریں, پورا بیان آ جائے گا, وہ سنیں. اچھا بھائی میرا نام حسین احمد, میں صرف آپ سے ملنے کے لیے ضلع سرگودھا کے شہر ہماری سے. یار بغیر بتائے نہیں آیا کرو, دیکھو میں تھکاوٹ سے کیا حال ہو گیا ہے, اور مجھے اب رات کو لیٹ نائٹ سونے کا موقع ملے گا, اب میں نے کھانا بھی نہیں کھایا, ابھی میں کھانا کھاؤں اثر کتنی جلدی ہے, تھوڑی دیر مجھے آرام کا بھی موقع چاہیے. تو پھر ملیں گے انشاءاللہ. کہاں ہیں سرگودھا والے؟ اسلام آباد سے کسی نے ٹائم لیا تھا مسافر کرنے میں. اسلام آباد سے عقل مند آدمی ہے, عقل مند اس لیے کہہ رہا ہوں, لوگ آ جاتے ہیں اسلام آباد سے لاہور سے اور پھر کہتے ہیں ملاقات کرنی ہے تو میں ٹائم نہیں دے پاتا. بھائی وہ کہتے ہیں میں تو لاہور سے آیا ہوں, لیکن کچھ عقل مند لوگ بھی ہوتے ہیں. اب اسلام آباد سے ایک صاحب نے جو اچھا ماشاء اللہ اسلام آباد سے ایک صاحب نے رابطہ کیا کہ میں اسلام آباد سے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں اور یہ کام ہے, وہ کام ایسا ہی ملے بغیر ہو نہیں سکتا, وہ تو ٹائم دیں. پھر میں نے ان کو ٹائم دیا کیونکہ مجھے پتا ہے ایک بندہ فلائٹ کر کے میرے لیے آئے گا, تو ٹائم کا پھر میں نے پابند کیا. پھر میں بڑا پروٹوکول دیتا ہوں بندے کو. اب پتہ نہیں وہ آ گئے کہ نہیں آ گئے, آج کا ٹائم دیا تھا, مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ پہنچے. پھر میں نے کہا بندہ ان کو جمعے کی نماز میں بلایا, تو جمعے کے بعد پھر میں نے گھر سامنے کا صاف کروایا کہ اثر تک اس کو انتظار کرنا پڑے گا, تو گھر میں بیٹھنے کے لیے اس کے لیے جگہ آج خادم سے صاف کروائی کہ اسلام آباد سے ایک بندے کو ٹائم دیا, وہ بےچارا اب صرف میرے سے ملنے کے لیے آ رہا ہے, تو وہ اثر وہ جمعے سے اثر تک کہاں رہے گا؟ ٹائم تو اثر کے بعد ہے, آئے گا وہ جمعے میں. تو پھر میں نے باقاعدہ گھر صاف کروایا, سامنے کمرہ صاف کروایا کہ اس بندے کے لیے بیٹھنے کا وہاں انتظام. مسافر ہے نا تو تمیز سے آئیں گے تو پورا پروٹوکول ملے گا بھائی. بغیر وقت کے آپ آئیں گے تو پھر جاپان سے آئے ہو یا چاند سے آئے ہو بھائی. میں اپنے سارے کاموں کو آگے پیچھے اگر کرنا شروع کر دوں تو میں تو سارا دن پھر اسی کام کا رہ جاؤں گا اور دنیا میں کسی کام کا نہیں رہوں گا. تو ٹائم لے کر آئیں گے تو پروٹوکول بھی ملے گا انشاءاللہ. چائے کا ابھی بھی ایک دفعہ بھی نہیں میں نے کہا, ہو سکتا ہے چائے بھی مل جائے, ہو سکتا ہے شربت بھی مل جائے, ہو سکتا ہے ایک دفعہ میں آپ سے تکلفاً پوچھوں چائے پئیں گے آپ کہیں نہیں, میں کہوں چلو کوئی بات نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے میں آپ سے پوچھوں آپ نے کھانا کھا لیا آپ کہیں نہیں, تو میں کہوں اگر کھا لیا ہوتا تو چائے پلاتا آپ کو, ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے پلا بھی دوں, وہ پھر میری مرضی ہے, لیکن تمیز سے پھر ملوں گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. بھائی کہہ رہے ہیں آپ سے ملنا مشتاق ہو گیا. مفتی صاحب میں 12ویں کلاس کا طالب علم ایئرپورٹ سے آپ سے ملنے آیا ہوں. دیکھو میرے بھائی آپ کے پاس وقت ہو تو آپ سے ملاقات. کہاں ہے بھائی بندہ, کہاں ہے؟ السلام علیکم, کیا حال ہے, کیسے ہیں, سب سیٹ چل رہا ہے, کھانا کھائیں چائے پئیں گے؟ کھانا کھایا آپ نے؟ کھا لیا, نہیں کھایا ہوتا تو کھانا کھلاتا. دیکھو یہ زبردست بات ہے, میں نے اسے پوچھا کھانا کھا لیا, اگر یہ کہتے نا نہیں کھایا تو میں کیا کہتا, کھا لیا ہوتا تو چائے پلاتا. یہ بہترین طریقہ ہے مہمان کو ٹرکانے کا, اچھا کام نہیں ہے, غیر اخلاقی حرکت ہے. تو میں ان سے کہتا کہ کھا لیا ہوتا تو آپ کو چائے پلاتا. اب انہوں نے ہوشیاری دکھائی نا, میں نے اسے کھانا کھا لیا, کہہ رہے نہیں کھایا, سوری کھا لیا, تو میں نے کہا نہیں کھایا ہوتا تو کھانا کھلاتا. ایک تیر سے کیا ہو گئے, دو شکار. تو یہ لفظ یاد رکھ لیں, مہمان جب آئے اور آپ کا موڈ نہ ہو اس کو کچھ کھلانے کا تو آپ اس سے پوچھیں کھانا کھا لیا, اگر وہ کہیں ہاں کھا لیا تو کہیں اگر نہیں کھایا ہوتا تو کھانا کھلاتا, اور اگر وہ کہیں کہ نہیں کھایا تو آپ کہیں اگر کھا لیا ہوتا تو چائے پلاتا. چلیں آئے ہیں مسافہ کر لیں, ٹھیک ہے, یہیں ہول سیل پہ نا سستے میں کام ہو جائے تو اچھا ہے. تو اللہ بہت جزائے خیر, یہ تو بڑا ہی زبردست کام کیا آپ نے, خوشبو لے کر آئے ہیں ماشاء اللہ, اللہ بہت جزا. اچھا ماشاء اللہ, جزاک اللہ احسن الجزا. یہ کون ہے؟ اچھا اچھا, میں نے کہا یہ بھی شاید بلوچستان سے ہے. اچھا کیا پرچی؟ مانسہرا سے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول کرے, ٹھیک ہے, آپ کو ترقیاں دے. چلو بھائی کافی ہو گیا میرا خیال ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب.